हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे जयो विष्णुपाद परमहंस परिभाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन धाम की, श्री बरसाना धाम की, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे। आई थिंक यू कैन डू बेटर। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। स्वाज राधा रानी का आविर्भाव महोत्सव है। राधा रानी सर्वतोपरि प्रेम का मूर्तमान स्वरूप है। प्रेम ये जो संकल्पना है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव इज राधा रानी। केवल प्रेम की पराकाष्ठा यानी सुप्रीम मोस्ट लव, पराकाष्ठा यानी टॉप मोस्ट, प्रेम की पराकाष्ठा को प्रदान करने के लिए ही राधा रानी आती है। और ब्रज के अलावा राधा रानी और कहीं नहीं आती है, क्योंकि ब्रज भूमि प्रेम रस भूमि है। और जहाँ पर प्रेम की देवी आ सकती है वो एक ही भूमि है, वो है प्रेम रस भूमि। श्रीमद् भागवत में जब कृष्ण बलराम नंद बाबा यशोदा रोहिणी मैया और सभी भाई गोकुल से वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि गोकुल में बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, दिन ब दिन कंस के सैनिक आ रहे हैं और बालक कृष्ण बलराम को बहुत कष्ट दे रहे हैं, इसलिए उपनंद बाबा के इच्छा के अनुसार वो सब गोकुल से निकलते हैं वृंदावन के जाने के लिए। आप सब लोगों को शायद पता होगा कि वृंदावन, ये आज का जो वृंदावन है भौगोलिक वृंदावन, वो भी है उसमें पूरी यमुना सम्मिलित है, उसमें पूरा गोवर्धन सम्मिलित है, उसमें नंदगांव, बरसाना, जावट, कोकिलावन ये भी सम्मिलित है। ये सब मिलकर 20 कोस का वृंदावन होता है और भौगोलिक वृंदावन केवल 281121 पिन कोड इतना ही है, लेकिन पौराणिक वृंदावन जो है उसमें नंदगांव भी बरसाना भी सम्मिलित है। इसलिए जब उपनंद महाराज ने बताया कि वृंदावन जाइए, हम वृंदावन जाएंगे, वहाँ पर बसेंगे, वहाँ पर यमुना जी हैं, वहाँ गोवर्धन है, ये सब कुछ वर्णन आता है, तो वृंदावन का जो एक हिस्सा है उत्तर दिशा में वो नंदगांव है, वहाँ पर कृष्ण बलराम बसे और वहाँ पर बरसाने में राधा रानी और विश्वभानु महाराज बसे। तो उस समय ऐसा श्लोक आता है भागवत में कि वृंदावन को देखकर कृष्ण बलराम को बड़ा आनंद आया। तो आचार्य हमारे उसमें तात्पर्य दिखते हैं, देते हैं, भाव देते हैं कि जो कृष्ण बलराम पूरे विश्व को आनंद देते हैं उनको ये वृंदावन सुख देता है, ऐसे वृंदावन की महिमा है। और वो वृंदावन प्रेम रस की भूमि है जहाँ पर प्रेम प्रकट होता है, प्रेम का उगम होता है, और वो प्रेम का उगम कराने के लिए राधा रानी श्री वृंदावन धाम में आती है। जैसे कृष्ण भी कभी वृंदावन के बाहर एक कदम रखते नहीं है, राधा रानी ब्रज के बाहर कभी कुछ कदम रखती नहीं है। वृंदावनम पादम एकम न गच्छति। तो साधारण स्तर पे शक्तिमान के द्वारा शक्ति का निर्माण होता है और शक्तिमान शक्ति को निर्देश देते हैं किस तरह से कार्य करना है। परास्य शक्तिर विविधाई व सूयते। श्री कृष्ण की ऐसे अनंत शक्तियां हैं जिसके द्वारा श्री कृष्ण इस पूरे सृष्टि का, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि का संचालन करते हैं। लेकिन ये बात वहां तक सत्य है जब तक आप ब्रज के बाहर हो। आध्यात्मिक जीवन में सत्य और असत्य एक साथ निवास करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि द हाईएस्ट ऑफ ऑल contradictions they coexist very happily in spirituality। तो ये जो सत्य है ये केवल ब्रज के बाहर सत्य है और वही सत्य जब ब्रज में विचार करते हैं तो उल्टा हो जाता है। वहां पर शक्तिमान को ही शक्ति नियंत्रित करती है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है उनकी, लेकिन वो ब्रज में उस शक्ति के अधीन रहते हैं, वो शक्ति उनको नियंत्रित करती है। वो शक्ति के इशारे पर शक्तिमान कार्य करते हैं, यहाँ तक कि शक्ति की उपस्थिति में शक्तिमान बहुत अस्थिर हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपना जो क्या कहते हैं ना, बैलेंस्ड एग्जिस्टेंस, संतुलित अस्तित्व को बनाए रखना उनके लिए राधा रानी के अस्तित्व में उपस्थिति में नहीं हो सकता है। वो शक्तिमान श्री कृष्ण उनकी लादिनी शक्ति राधा रानी के अधीन रहते हैं और करबद्ध होकर, करबद्ध बनी, करबद्ध, सब लोग करबद्ध हो जाइए, हरे कृष्ण, हमको भी सबको करबद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर करबद्ध नहीं होगा तो हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, कभी ऊपर जाएंगे। तो करबद्ध होकर हमारे शक्तिमान श्री कृष्ण सदैव आज्ञा पालन करने के लिए, राधा रानी की आज्ञा पालन करने के लिए लालायित रहते हैं, ऑलवेज ईगर टू फॉलो the desire and the instruction of Radha Rani। Krishna कभी विवश नहीं होते। कृष्ण की व्यक्तिमत्व ऐसा है कि वो दूसरे लोगों को विवश कर देते हैं। In front of Krishna everybody becomes helpless। By his love also for devotees and by his power for the non-devotees, for the demons, वो विवश कर देते हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। लेकिन वो श्री कृष्ण प्रेम और प्रीति एक ही विषय है, उसके सामने विवश हो जाते हैं। श्री कृष्ण को अगर हम कहीं विवश होते हुए देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कहीं प्रेम का प्राकट्य हो रहा है, उनके प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है। और वो प्रेम राधा रानी स्वयं है, वो केवल प्रेमी नहीं है, वो स्वयं प्रेम भी है, वो प्रेम का सागर भी है। वो इसलिए गोपियों को भी कहा गया कि वो भक्ति करती नहीं थी, वो साक्षात स्वयं भक्ति थी। वो प्रेम करती नहीं थी, वो साक्षात प्रेम थी, प्रेम स्वरूपा थी। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा स्वयं उनके अधीन रहा करते थे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो राधा रानी का प्रेम है, जो साक्षात प्रेम, मूर्तिमान प्रेम, वो कृष्ण का ही अंश है देखा जाए तो। लेकिन कृष्ण का अंश जब कृष्ण से बाहर होकर राधा रानी नाम के व्यक्तित्व में प्रस्थापित हो जाता है, तो वो प्रेम अनंत गुणित होकर प्रकाशित होता है। कृष्ण भी करुणा के उगम है, करुणा के सागर है, करुणा निधान है कृष्ण। लेकिन कृष्ण की व्यक्तिमत्व के अंदर जो करुणा है, वो जब उनसे अलग होकर राधा रानी के व्यक्तित्व में प्रस्थापित हो जाती है, तो वो करुणा अनंत गुणित होकर उनके अंदर प्रकट होती है। इसलिए सदैव जब भी करुणा का विषय आता है, तो राधा रानी की करुणा अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। कृष्ण की करुणा भी अथाह है, असीम है, उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी राधा रानी की करुणा उससे भी अधिक असीम, उससे भी अधिक गहरी और उससे अधिक विस्तारित है। इतनी विस्तारित है कि कृष्ण भी उसको देखकर दंग रह जाते हैं। जो करुणा कृष्ण भी नहीं दिखा सकते हैं, वो राधा रानी दिखाती है, वो दिखा सकती है। उसके दो कारण हैं कि और भी कोई उनको अगर दिखाने का प्रयास करेगा तो उनका अधिकार नहीं होता है। राधा रानी का अधिकार भी है और क्षमता भी है। तो इसको एक कथा बताते हैं आपको कि जब ही अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बालकों का वध कर दिया, पांडव समझ के उन्होंने युद्ध के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद रात को तंबू को आग लगाई और उस धधकती ज्वाला में जब सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, उनको लगा था इसी तंबू में पांडव सो रहे हैं, तो उसमें पांडवों के 5 बालक सो रहे थे, पुत्र। तो एक तरफ से आग लगा दी तंबू में और दूसरे तरफ खड़े हो गए, ताकि वो भागे वहाँ पर तो आएंगे तो सबको सर काटते काटते निकल गए वो। इस तरह से 5 बालकों का वध हुआ और सुबह पता चला कि अश्वत्थामा ने ये कार्य किया है। तो अश्वत्थामा के पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन लगे, और जब श्री कृष्ण अर्जुन उनका पीछा कर रहे हैं, अश्वत्थामा भी रथ में बैठ के भाग रहे हैं। उसके बाद में अश्वत्थामा का रथ जो है वो, उसके घोड़े जो है वो झाग आता है मुँह से, बेहोश हो जाते हैं, तो वो रथ से कूद कर पैदल भागने लगता है। तो कृष्ण भी अर्जुन भी अपना रथ छोड़कर पैदल भागने लगते हैं। उसके बाद उसको पता चलता है कि अभी मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे निकट आएंगे और मेरा वध करेंगे। तो वो ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, वो कहते हैं इनका आखिरी वंश भी मैं नाश कर लूँगा। उतने में कृष्ण एक रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित के गर्भ को बचाते हैं। बहुत लंबी कहानी है। फिर वो कृष्ण बलराम, कृष्ण अर्जुन उनको पकड़ते हैं और बांध कर घसीट कर द्रौपदी के सामने लेके आते हैं, कहते ये तो कोई आपका गुनहगार है, इसको आपको सजा देनी है, आप तय करो क्या सजा देनी है। तो बहुत ही आश्चर्यकारी कृति से, सबके लिए आश्चर्य है ये। हाँ, अगर आपके बाल 5 बालकों का किसी ने निर्घृण हत्या कर दी हो और वो गुनहगार आपके सामने लाया हो, तो आप क्या करेंगे? साधारण तौर पर करेंगे मार डालो इसे, वध करो इसका। लेकिन द्रौपदी भी भक्त हैं भगवान की और करुणा की भी पूंजी है। वो कहते हैं कि मुझे मेरे 5 बालकों का, क्या कहते हैं, वियोग से, उनके मृत्यु से इतना दुख हो रहा है, तो मेरे गुरु माता को मैं उनके बालक की वध का या हत्या का या मृत्यु का दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारे गुरु माता जो कृपी है, कृपाचार्य की है ना, कृपाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, कृपाचार्य की बहन, तो कृपी हमारी गुरु माता हैं और गुरु माता को हम ये कष्ट देना, इसको छोड़ दो आप, जाने दो उसको, क्योंकि मैं तो अनिवार्य रूप से कष्ट भोग रही हूँ और इनकी माता को कष्ट देना है कि नहीं देना, ये चॉइस मेरे हाथ में है, तो मैं चुनती हूँ कि इन्हें नहीं दुख देंगे, जाने दो। लेकिन भक्त का अपराध जब होता है तो एक समय पर भक्त माफ कर सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण उनको क्षमा नहीं करेंगे, उनको अपना भक्त का अपराध सहन नहीं होता है। तो श्री कृष्ण ने उनको ऐसा शाप दिया है, वो आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में, निर्माण के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को कृष्ण ने ऐसा श्राप नहीं दिया होगा। उन्होंने सबसे पहले तो उनका मणि जो है ना वो छीन लिया, जो अश्वत्थामा के शीश पर था, उसके अस्तित्व का एक गौरवशाली स्वरूप था, वो बहुत प्रकाशमान मणि था, वो उन्होंने उखाड़ लिया उसको और कहा कि चले जाओ यहाँ से, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका ये जो जख्म है ये सदैव खून से लथपथ रहेगा, इसमें सदैव खून बहता रहेगा, किसी प्रकार का इलाज इस खून को रोक नहीं पाएगा। यानी सब डॉक्टरों को छुट्टी कर दी कि वैद्य के पास जाओ ही मत, किसी का दवाई चलेगा नहीं इसके ऊपर, और इसमें इतना भयंकर दर्द होगा कि आप मरना चाहोगे, किसी भी उपाय से ये दर्द कम नहीं होगा, बढ़ते रहेगा और इतना दर्द रहेगा कि आपको लगेगा जीवन समाप्त हो तो अच्छा है, लेकिन ऐसे सोचने पर भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप जीवित ही रहोगे। यानी दर्द, खून का प्रवाह, मृत्यु का ना होना, चिरंतन दर्द, चिरंतन यातना आप भोगते रहोगे, चले जाओ यहां से। चला गया और इतना तड़पा वो, इतना तड़पा, कहते उस तड़प में बहुत शुद्धिकरण हुआ उसका, लेकिन दर्द इतना असह्य था कि वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी महाराज बचाओ मुझे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपको हमारे स्वामी ने श्राप दिया है, हम आपको नहीं बचा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, स्वामी के अधिकार के क्षेत्र के बाहर जाकर हम कुछ नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो वो शंकर जी के पास गया, तो शंकर जी ने भी कहा कि वो हमारे स्वामी हैं, कृष्ण भगवान हमारे आराध्य हैं, उन्होंने अगर कुछ चाहा है, कुछ बताया है, तो उसके विरुद्ध जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे विचार से ब्रह्मा जी या शिव जी, इनमें से एक ने उनको बताया कि एक आपके लिए ऐसा आशा है जहाँ पर आपके दुख का निवारण हो सकता है, मैं आपको वादा नहीं करता कि आप यशस्वी रहेंगे, लेकिन प्रयत्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बरसाने जाइए और वहाँ पर राजा रानी को पुकारिए, असहाय होकर पुकारिए और फिर देखिए क्या होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो अश्वत्थामा जी उसके बाद में बरसाने आए, वो बरसाना के पास में गांव है, उसका नाम है पीपासा वन, इसको आज के तारीख में पिसाया कहते हैं, पिसाया लोकल लैंग्वेज। तो वहां पर जाके उन्होंने राधा रानी को पुकारना शुरू किया, सब लोग पुकारेंगे, राधे श्री राधे, हे करुणामयी राधे, राधे किशोरी दया करो, कृपा करो, करुणा करो। हमारे पुकार में तो इतना कशिश तो है नहीं, क्योंकि हमको इतना दर्द तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उपवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। लेकिन आप अश्वत्थामा की सोच सकते हैं ना कि कितना कष्ट था उसको, और कितना व्याकुल था वो, कितना परेशान था, कितने दिनों से था परेशान, तड़प रहा था, भटक रहा था। तो उसकी करुणामय पुकार, हृदय से की हुई पुकार सुनकर राधा रानी प्रकट हुई। इसका अर्थ ये होता है कि राधा रानी ऐसे प्रकट नहीं होती है जहां पर अशुद्धि है, अपवित्रता है, पाप है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक वो ब्रह्मा शिवजी पूरे ब्रह्मांड यहाँ वहाँ सबके पास जाकर थके, जब ही परेशान होकर व्याकुल होकर इतना दर्द सहन करके वहाँ पहुँचा, तब तक वो शुद्ध हो चुका था, उसके पाप का क्षालन हो गया था, इतना दर्द कृष्ण ने उनको दिया था। तो राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी ने उसके शीश को स्पर्श किया, अपने दिव्य करकमलों से उनको स्पर्श किया, तत्क्षण उनके जख्म से खून बहना बंद हो गया, जख्म भर गई और दर्द भी समाप्त हो गया। और फिर चरण राधा रानी के चरणों में अश्वत्थामा जी गिरे और बहुत स्तुति की उनकी। तो राधा रानी ने उनको वरदान दिया कि आप अभी रहिए, यहीं रहो और यहीं रहो, और मेरा ये वन है, इसका नाम पिपासा वन है, और जब हम बहुत एक दूसरे के लिए हम यानी कृष्ण और राधा रानी व्याकुल हो जाते हैं, तो हम यहाँ आके मिलते हैं। पिपासा का अर्थ है अति अति प्यास, एक होती है प्यास और एक होती है पिपासा, बहुत बहुत अति प्यास को पिपासा कहते हैं। तो जब हमारे अंदर वैसी प्यास पिपासा उत्पन्न होती है मिलन के लिए, तो हम इस वन में आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं। और इसी वन में जब हम रास रचाते हैं कई बार, तो जब श्री कृष्ण को तृष्णा होती है, प्यास लगती है, तो मैंने खोदा हुआ एक कुंड है यहाँ पर जिसका नाम राधा कुंड है, उसका जल मैंने उनको कई बार पिलाया है। और जब मुझे प्यास लगती है तो कृष्ण ने भी एक कुंड बनाया है, श्याम कुंड, उसका जल कृष्ण ने मुझे पिलाया है, श्याम सुंदर जी ने पिलाया है। तो राधा कुंड श्याम कुंड से सुशोभित है पिपासा वन, यही आप रहो और मेरे वन की रक्षा करो। तो अश्वत्थामा जी वहीं रह गए, और अश्वत्थामा जी तो अष्टचिरंजीवी जीवों में से एक है ना, तो चिरंजीवी का तो उनको पहले से वरदान था, तो जो चिरंजीवी होकर अभी भी पिपासा वन में निवास कर रहे हैं। और जो हृदय से शुद्ध परम शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे संतों को वहाँ दर्शन देते हैं, वो घूमते हुए बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उनका विग्रह भी वहाँ पर है, राधा कृष्ण के साथ में उनका भी एक विग्रह है अश्वत्थामा जी का, एक कोने में पिपासा वन के। और उस वन की ऐसी महिमा है कि उस वन में जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, तो उसको अगर आप काटते हो तो उस लकड़ी का उपयोग केवल कृष्ण की राधा रानी की सेवा में हो सकता है, सत्संग के लिए हो सकता है, पवित्र कार्य के लिए हो सकता है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता है। तो आपको, आप जब उस वन में जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लकड़ी के ढेर बनाए हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसे आपको पता चलेगा कि कोई ने, किसी ने रखा है उसको, ऐसे 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 करके स्टैक करके रखा हुआ है। थोड़ा आगे जाएंगे तो और एक ढेर मिलेगा, ऐसे पूरा ढेर ही ढेर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने घर में पवित्र कार्य, यज्ञ, हवन, होम आदि करने के लिए लकड़ी ले गए हैं, वो लोग बची हुई लकड़ी आकर वहाँ पर रखते हैं वापस, उसको घर पे रखते नहीं है और आगे अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करते। इतनी महिमा है उसकी कि अगर किसी व्यक्ति ने वहाँ की लकड़ी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने का प्रयास किया, उदाहरणार्थ अगर किसी को ठंड में बहुत मजा करना है, नाच करना है, ऐसा ब्रज में भी सब कुछ होता है इस प्रकार का काम, कलयुग का प्रभाव है, तो अगर वो बॉन फायर करने के लिए अगर लकड़ी ले जाते हैं तो तीन काम हो सकते हैं परिणाम के रूप में, या तो वो मर सकता है, या तो वो पैरालाइज्ड हो सकता है, लकवा मार सकता है उसको, या तो वो अंधा हो सकता है। तो हमारे आई कैंप के समय पे बरसाने में एक समय पे वो एक गांव है वहाँ पर खदीर वन, जहाँ पर बकासुर का वध हुआ था, खायरा कहते हैं उसको, खायरा। तो एक ऐसा जवान उद्दंड बालक जो है वो लकड़ी लेकर आया, कोई पवित्र कार्य नहीं, ऐसे ही लकड़ी तोड़ के लेके आया और पिपिसाए वन से निकला, और निकल के उधर से 4 किलोमीटर के अंतर पर खदीर वन है, 3 किलोमीटर। तो वो जैसे ही खदीर वन पहुंचा खायरा, तो वो अंधा हो गया। तो हम लोग वहां प्रसाद लेने गए थे, हमारे बहुत विश्वासी वहां मित्र हैं, तो सबने कहा अरे बालक अंधा हो गया, बालक अंधा हो गया। तो किसी बुजुर्ग ने कहा अरे पगले उद्दंड बालक, जाओ लकड़ी छोड़ के आओ वापस, खिदर वन से लकड़ी लेके आयो, वहां के लोग खिद्दर वन कहते हैं उसको, यार खिद्दर वन के लकड़ी लेके आओ, जाओ लखे आओ। अभी वो जाएगा कैसे, वो तो अंधा है ना, दो चार लड़कों को कर दी जाओ उसको ले जाओ और लकड़ी छोड़ के आओ। वो लकड़ी वहां पर पहुंचा, छोड़ा, उसके नेत्र वापस आ गए, दृष्टि। ये तो हमारी देखी हुई हकीकत कथा है, ये कोई पुराण की कथा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी के पवित्र स्थानों के प्रति ऐसी उद्दंड छेड़छाड़ कभी करनी नहीं चाहिए, छेड़खानी। जो सत्य है वो आज भी सत्य है, और ज़्यादा हम लोग तो उद्दंडता दिखाएंगे तो बहुत बड़ा दंड होगा, क्योंकि वृंदावन धाम मायापुर जैसा नहीं है, वहाँ पर जो भी करते हैं उसका हिसाब इक्वल हो जाता है। हाँ, मायापुर में सब दया और करुणा, लेकिन वृंदावन धाम में हर कार्य का अच्छा या बुरा 100,000 गुणित परिणाम होता है। कुछ भी आप करो, भजन करो तो 100,000 गुणित लाभ, अपराध करो तो 100,000 गुणित उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये स्टोरी जो है इसका तात्पर्य क्या है, शिवजी ने और ब्रह्मा जी ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं था। स्वामी ने दिए हुए शाप को हम काट सकते हैं, ये सोचना भी उनके लिए अधिकार नहीं उनका। और उन्होंने कहा राधा रानी के पास जाओ, क्योंकि उनको पता था कि राधा रानी का अधिकार क्षेत्र कितना विस्तृत है। हाँ, कृष्ण के अधिकार क्षेत्र से भी परे है, क्योंकि एक ही ऐसी व्यक्ति है जो कृष्ण की दी हुई मर्यादा को तोड़ सकते हैं या कृष्ण के दिए हुए शाप की मर्यादा को वो तोड़ सकते हैं। तो राधा रानी के पास अधिकार भी है और उतनी करुणा भी है। जिस व्यक्ति को आज तक ऐसे किसी शाप नहीं दिया, किसी ने इतना भयंकर शाप, वो शाप राधा रानी ने एक क्षण में काट दिया और उसको आश्रय दिया, उसको कृपा की, उसको ब्रजवास दिया। क्या नहीं दिया उसको, ब्रज का आनंद दिया। आज भी ब्रजवास के रूप, ब्रजवासी के रूप में अश्वत्थामा वहां निवास करते हैं। इतनी करुणा कहीं भी देखी गई नहीं है। इसको देखकर कृष्ण भी अचंभित रहते हैं। कृष्ण ने कभी सुना नहीं हमने कि उसके बाद आके राधा रानी को प्रश्न किया, अरे तुमने उसको क्यों बचाया, अरे मैंने तो शाप दिया था उसको, अब जानते नहीं उसने इतना बड़ा अपराध किया था, कितना जघन्य अपराध किया, जब तुमने उसको माफ कर दिया। कुछ पूछा होता मुझसे कि कौन है ये कि तुमने इतना भयंकर शाप इसको दिया, क्या इतना पाप उसने किया था, कुछ नहीं। कृष्ण को भी आश्चर्य जरूर है लेकिन करुणा पर भी इतना, इतनी श्रद्धा है राधा रानी की, इतनी निष्ठा है उनको। एक और उनकी करुणा की कहानी आती है। एक भंगी था, हमारे भाषा में कहते ना झाड़ू लगाना, लेकिन ब्रज में कहते हैं बुहारी करना। बुहारी करना बहुत पवित्र शब्द है। ब्रज के रस्तों की बुहारी श्यामानंद गोस्वामी ने भी की थी, है ना, दुखी कृष्ण के रूप में। तो ब्रज में भंगी बनना भी बहुत भाग्यशाली चीज है। ब्रजवासी संत जो है वो कविता करते हैं कि ब्रजवासी भंगी बहुत भाग्यवान होते हैं, क्योंकि वह दिन रात ब्रज रज में नहाते रहते हैं। क्योंकि जब आप बुहारी करते हो ना तो धूल ऐसे आकाश में उड़ती है, तो आगे जाओगे तो उसी धूल के बादल में आप जाके बुहारी करते रहोगे। सारी धूल कपड़े में, शीश पे, नाक में, हमारी आईलिड्स पे, हमारी भवे पे, सब पे छा जाती है। हर तरफ अनंत धूलिकण आपको आवृत्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि कर रहा है तो बुहारी है तो भंगी, लेकिन उसके इतना भाग्यशाली जीव कोई नहीं है। और ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान तो इनको इतनी सराहना करते हैं, ये लोग भंगी है तो भगवान त्रिभंगी है, है ना, तीन जगह पर मुड़े हुए हैं। ऐसे संत, एक संत ने भंगी समाज को प्रोत्साहित किया था कि आप भगवान को इतने प्रिय हो कि आप एक भंगी हो तो भगवान त्रिभंगी है, आपके ही है भगवान। तो ऐसे बुहारी करने वाला एक भंगी भक्त था, वो राधा रानी का भक्त था। तो राधा रानी के मंदिर की जो सीढ़ियां हैं ना, वो 250 252 सीढ़ियां हैं, उसकी बुहारी कर रहा था। उसकी बुहारी लोग क्यों करते हैं, इस भाव से करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है उसको पगार भी मिलता है उसका, लेकिन वहां के बुहारी करने वाले जो जीव होते हैं वो केवल पगार के लिए बुहारी नहीं करते हैं। वो राधे 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 पुकारते हुए भले भिक्षा मांगते हैं, अरे दे दो, हम यहाँ के मैतर है, हम यहाँ के भंगी है, हम यहाँ के कुछ दे दो, कुछ दे दो, राधे 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 बोलते रहते हैं नित्य रूप से। लेकिन अधिकतर जो भंगी होते हैं वो वहां पर बुहारी इस भाव से करते हैं कि इन्हीं सीढ़ियों से श्री जी और श्याम सुंदर जी ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनके पैरों को कोई कंकड़ लगना नहीं चाहिए, कोई कांटा चुभना नहीं चाहिए, कोई पत्थर लगना नहीं चाहिए, इस भाव से बुहारी करते थे। सदैव वो सीढ़ियां स्वच्छ रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर उनका दिल हुआ तो वो नीचे आ सकते हैं, चल सकते हैं। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे महल राधिका का, बुहारा करेंगे। और क्या करेंगे, बुहारा बुहारी करते करते उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। तो ऐसे श्री राधे श्री राधे श्री वृंदावन, श्री राधे श्री राधे श्री वृंदावन, बोलो श्री राधे श्री राधे श्री वृंदावन श्री वृंदावन, श्री राधे श्री राधे श्री वृंदावन श्री वृंदावन, ऐसे मुख से पुकारते हुए, आंखों से अश्रु बहते हुए वो बुहारी कर रहा था। इतने पवित्र भाव से वो बुहारी कर रहा था, इतने शुद्ध हृदय से, इतने प्रेम से, कि राधा और कृष्ण, राधा और श्याम सुंदर जी उसी के ऊपर एक बड़े वृक्ष के एक शाखा पर प्रकट हो गए, जो शाखा जैसे ऐसे जा रही है और उस पर वो ऐसे प्रकट होकर ऐसे बैठे, पैर हिला रहे हैं ऐसे, उसके ठीक नीचे वो बुहारी कर रहे हैं। तो राधा रानी प्रसन्न होकर श्याम सुंदर को कहती है, हे प्यारे जू, आप कुछ भेंट दो इसको, कुछ कृपा करो उसके ऊपर। तो कहते हैं, देखो कितना अच्छा भक्त है, कितने प्रेम से पुकार रहा है, कितने प्रेम से सेवा कर रहा है ना। श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया भक्त है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है, तो कृपा करो कुछ करो। तो क्या करूँ, आपकी क्या इच्छा है? तो राधा रानी कहती है, आपका जो अंगरखा है ना वो दे दो उसको। तो श्री कृष्ण जो है वो हरे रंग का अंगरखा पहनते हैं, वो उनको नंद बाबा देते हैं, नंद बाबा भी हरे रंग का अंगरखा पहनते हैं। अंगरखा यानी लॉन्ग जैकेट, जो हमारा जैकेट है वो इधर तक होता है, अंगरखा यानी यहाँ तक होता है। और विश्वानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी है वो लाल रंग का अंगरखा पहनते हैं, मरून कलर। तो आज श्याम सुंदर जी पिताजी का दिया हुआ हरे रंग का लंबा अंगरखा पहने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे दूंगा, तो मेरे पिताजी ने दिया है, अगर मैं दे दूंगा तो पिताजी पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। तो राधा रानी कहते, इतनी भी क्या आ सकती है, इतना बड़ा अच्छा भक्त है उसको दे दो। कृपा करने में आसक्ति दिखानी नहीं चाहिए, यानी कृपा करते समय तो बहुत झिझक होती है। और कृष्ण फिर मना कर दे, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। तो राधा रानी कहते, कोई बात नहीं, कोई आपके अंगरखे की जरूरत नहीं, मैं मेरी शॉल आपको दे दूंगी, तो मेरी मैया ने मुझे पहनाई है। तो अपनी शॉल ने उतारती है, छोड़ देती, सीधे वो शैल शॉल जो है थोड़ा हवा का झोंका खाते 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 उस भंगी के कंधे पर गिर जाती। क्या कहें आपको, जैसे वो शॉल उसके कंधे पर गिर जाती है ना, उसे कांपता है पूरे से, प्रेम से गदगद होकर कांपता है, उसका आंखों से अनंत अश्रु प्रवाह होता है, कंठ गदगद होता है, बुहारी बंद हो जाती है और वहीं गिर जाता है, प्रेम से बेहोश होकर गिर जाता है, स्तब्ध होकर। यह है कृपा राधा रानी की, इस पर कृष्ण भी कृपा नहीं करते हैं, उस पर राधा रानी कृपा करते हैं। वो कितना भी पतित हो, वो पतित तो था नहीं, लेकिन दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो पतित से पति व्यक्ति अगर कृष्ण की भी कृपा के लायक नहीं है तो वो राधा रानी उसको कृपा कर देती। यहां तक कि वो ललिता देवी जो उनकी प्रधान सखी है, एक प्रकार से उनके गुरु भी हैं वो, एक प्रकार से उनकी गुरु भी हैं, बड़ी भी है उम्र से, और राधा रानी मानती भी है उनको। राधा रानी बड़ी कोमल है, सुकोमल है, और ललिता देवी बड़ी तेज है, बड़ी है, और क्या कहते हैं ना, धैर्यशाली है, बहुत डेरिंग है। जब भी कृष्ण से भोली भाली राधा रानी पर आतंक होता है तो वो बीच में खड़ी रहती है, डोंट कम हियर। तो वो ललिता जी जो है वो राधा रानी की बहुत प्रिय सखी हैं, और वो उनको कहती है कि देखो, उनको आदेश देकर रखा है, ढूंढ ढूंढ के निकालो पतित से पतित जीव, उसमें एक गुण होना चाहिए बस, उसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा होनी चाहिए, या श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, भले पाप कितने भी हो, लेकिन अगर वो एक स्पार्क, एक चिंगारी उसके अंदर हो तो उनको पकड़ पकड़ के ले आओ, और उनको अच्छी तरह से तैयार करके, हम कहते हैं ना पॉलिश करके, मेरे पास प्रस्तुत करो, और आपके द्वारा प्रस्तुत की हुई लोगों को मैं कृष्ण को प्रस्तुत करूंगी। इसका प्रमाण है, वही ललिता जी स्वरूप दामोदर बनकर आई थी कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे ना, स्वरूप दामोदर जी ललिता जी हैं, और विशाखा जी कौन है, रामानंद राय। तो जब ही गुंडीचा मंदिर में गुंडीचा मार्जन की लीला हो रही थी, हाँ, चैतन्य महाप्रभु इंद्रधनु सरोवर से मटके में जल लेकर धुआ धुलाई कर रहे थे, पहले सफाई की, बाद में धुलाई की, और फिर अपने पीताम्बर से उसको पहुँच रहे थे, हाँ, तो उस समय सब लोग भाव में थे, हाँ, उधर एक जगह भी है जहाँ पर उनके मटके एक दूसरे को टकरा कर टूट गए, क्या मटका फोड़ ऐसा कुछ स्थान का नाम है वो, यहाँ पर वो जैसे जल्दी जल्दी में जा रहे हैं ना, आगे पीछे कोई जा रहा है पानी भरने के लिए खाली मटका लेकर, कोई भराव मटका लेकर लौट के आ रहे, तो उनके टकरार होके कई मटके वहाँ टूट गए थे। तो इस भाव में, इस आवेश में सभी लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई बुहारी कर रहा है, कोई पोंछ रहा है। उतने में एक बंगाली भक्त आया, उसने अपने मटके से पानी लिया और महाप्रभु चैतन्य के पैरों में डाल दिया, और जैसे पैरों में डाल दिया तो पैर पे बहकर पानी आया, वो तुरंत उसको अंजलि में लिया और पी लिया। महाप्रभु ने बाहर से क्रोध दिखाया, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा एटिकेट नहीं है, तो उसने दूसरी बार डाला। आप कह सकते हैं आध्यात्मिक उद्दंडता से देख रहे हैं कि बाहर से महाप्रभु जी अपना क्या कहते हैं असंतुष्टि प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बार भी अंजलि भर के उसका तुरंत वापस आया हुआ पानी जो है पी लिया, फिर उन्होंने क्रोध दिखाया, फिर तीसरी बार भी डाला उसके ऊपर, और तीसरी बार जब उसने पिया तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया, ये स्वरूप, ये तुम्हारे बंगाली वैष्णव कितने उद्दंड हैं, लाओ उनको अपने अंडर ट्रेनिंग दे दो, कुछ सिखाओ क्या शिष्टाचार कैसे होता है, ऐसे नहीं करना होता वैष्णवों के, बिना आज्ञा के इच्छा से पैर में जल डालकर जल पीना नहीं चाहिए। तो उस समय स्वरूप दामोदर जी ने वो बंगाली भक्त को अपने अपने छत्र छाया में लिया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दैट डे स्वरूप दामोदर जी टुक चार्ज ऑफ ऑल बंगाली डिवोटीज अंडर हिज केयर एंड ट्रेन देम। तो ये हम लोग सब बंगाली वैष्णव जैसे गौड़ीय संप्रदाय के, वो सब ललिता जी के अंडर हैं हम लोग। ललिता जी कहाँ कहाँ से पिकअप करती है, उनको पॉलिश करती है चित्र से और श्री जी को प्रकट कर प्रस्तुत कर देती है। तो ये श्री जी ने ललिता जी को बता दिया है, उनसे ज़्यादा कृपालु श्री ललिता जी हैं, क्योंकि वो केवल उस पाक देखती है, सारे पापों को नहीं देखती है, और आके ट्रेनिंग देती है और राधा रानी के साथ प्रस्तुत करती है। और राधा रानी की मूर्ति कैसी है, हाथ में कौन है, वो सारे भक्त हैं, हम लोग सब है, हो सकता है कभी एक दिन हम भी उधर जाएंगे, अभी तो नहीं है उधर, लेकिन वो हम लोग उनको हार देते हैं पहनाने में, लेकिन वो हार जो है ना वो भक्तों की वो माला है जो भक्त ललिता के द्वारा ट्रेंड होकर राधा रानी के हाथ में आए हैं। और जब राधा रानी के हाथ में आए हैं तो राधा रानी कृष्ण को उनको प्रस्तुत करती है, तो कृष्ण उनको मना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के दृष्टि से अगर कोई परफेक्ट भी नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, फिर भी राधा रानी सिफारिश कर रही है, इसलिए कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। कितना राधा रानी का अधिकार है, और यही एक भगवत तत्व का रहस्य है। राधा रानी भी भगवत तत्व है, कृष्ण भी भगवत तत्व है, लेकिन ये कृष्ण तत्व जो है इसका एक रहस्यमय एक्सपांशन है, विस्तार है। कहते हैं कि नरसिंह भगवान, वामन देव, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार और अनंत अवतार, शंभुमामी, युगे युगे, ये अनंत अवतार श्री कृष्ण के होते हैं। यहाँ तक कि बलराम भी श्री कृष्ण के पहले अवतार हैं, कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन फिर भी कृष्ण के लीला अवतार है, प्रथम विस्तार है। राधा रानी कृष्ण का विस्तार नहीं है, राधा रानी कृष्ण का अवतार नहीं है, राधा रानी स्वयं कृष्ण है, ये और एक अंतर है उसके अंदर। राधा रानी ये परम विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व तो 60 का गुणों का होता है, 60 कलाओं का होता है, परम भगवान का तत्व जो है वो 64 कलाओं का होता है। वो परम भगवान का तत्व जो है उसका रहस्यमय तत्व जो है वो राधा रानी है। और ये रहस्यमय तत्व की विशेषता यह है कि कुछ कुछ गुण कृष्ण के अंदर नहीं है, वो अधिक गुणित होकर, हो भी और नहीं भी, अधिक अधिक गुणित होकर राधा रानी में प्रकाशित होते हैं। और राधा रानी का व्यक्तित्व जो है वो प्रधान रूप से कृपा करुणा का अधिष्ठान है। कृष्ण भी उनके करुणा को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो ऐसे राधा रानी के बिना कृष्ण रह नहीं सकते। यहाँ तक कहा गया कि कृष्ण तेजस्वी कब तक हैं, या तेजस्वी कब तक दिखाई पड़ते हैं, जब तक वो राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं। जैसे ही राधा से दूर हो जाते हैं तो दो कारण से निस्तेज हो जाते हैं। एक, राधा का संग छूट गया तो राधा की जो आभा है, प्रेममयी गौर आभा, स्वर्णमयी आभा, उसके क्षेत्र में रहते हैं वो, तो अचानक मतलब वैसे ही अनायास ही वो प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि तो जैसे मैं अभी प्रकाशित दिखाई पड़ रहा हूँ क्योंकि ये बल्ब मुझे प्रकाश दे रहा है, वैसे वो आभा में रहते हैं तो उस प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित रहते हैं, पर प्रकाशित हैं, तो वो प्रकाशित हो जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो प्रकाश नहीं मिलता है, मैं यहाँ से हट के पीछे चला गया तो प्रकाश नहीं मिलेगा, तो उसके कारण भी वो तेज उनका कम हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि उनके विरह में वो दुखी हो जाते हैं, इसलिए निस्तेज हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि बरसाने में वो गौर तेज, स्वर्ण तेज सब जगह छाया हुआ है, इतना प्रकाशित है कि करोड़ों सूर्य जो है उनकी कांति की तुलना नहीं कर सकते। तो सूर्य जो है ना वो अंधकार में दिखता है जब राधा रानी का प्रकाश प्रकट होता है, और कोइंसिडेंस ये है कि राधा रानी सूर्य के वंश में ही प्रकाशित हुई है, प्रकट हुई है। कृष्ण जो है वो चंद्रवंश प्रकट हुए, कृष्ण चंद्रवंशी हैं, राधा रानी कृष्ण सूर्यवंशी हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र, रघु राजा, अभय कर्ण, दिलीप और अंशुमान, ये सब जो है वो सूर्यवंशी हैं। नवे स्कंद पढ़िए आप, पूरा आपको वर्णन मिलेगा, सारे सूर्यवंशियों का वर्णन नवे स्कंद में आपको मिलेगा भागवत के। और कृष्ण का चंद्रवंश का पूरा वर्णन है, उसके बाद में सूर्यवंश का भी वर्णन है। तो सूर्यवंशी होने पर भी, सूर्य इनके वंशी होने पर भी जब इनका तेज प्रकट होता है तो सूर्य अंधकार दिखाई पड़ता है। तो वो गौर तेज जानबूझकर राधा रानी नंदगांव भी तक फैलाती है, क्योंकि जब वो उनको छोड़कर अलग होकर नंदगांव जाते हैं रात बिताने के लिए, रहने के लिए, या कुछ समय के लिए कुछ भी हो, तो बहुत उदास रहते वो, ही फील्स लाइक लो एनर्जी। हाँ, तो उनको उत्साह देने के लिए कहते हैं वहां का नील तेज जो है वो गौर तेज से आच्छादित रहता है सब सदैव। ये राधा रानी के महिमा है, वो कृष्ण को विरह में भी थोड़ा सा सुकून देते रहते हैं, डोंट वरी आई एम स्टिल देयर, आई विल कम, आई विल मीट यू। तो ऐसे ये जो राधा और कृष्ण और राधा रानी का अस्तित्व, राधा रानी का प्रेम, आचार्य कहते हैं कि ये किसी के समझ के अंदर नहीं है, कोई समझ नहीं सकता, नोबडी कैन क्लेम टू अंडरस्टैंड। ये राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है, ये रहस्यमय प्रेम जो है, ये प्रगाढ़ प्रेम जो है, ये कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि आई नो। केवल सहचरी जो राधा रानी के सहचरी हैं, राधा रानी की बहुत सारी सखियां हैं, सखियां यानी सखी भी एक कैटेगरी है, लेकिन उनके साथ में रहने वाले जितने हैं उसमें बहुत कैटेगरीज हैं। एक मैंने कल बताया आपको किंकरी, सदैव सेवा के लिए उत्सुक रहती है। एक है सहचरी, साथ में चलने वाली, एक है सखी, एक है परमेष्ठी सखी, ऐसे कई प्रकार है सखियों के भी साथ में चलने वाले। ये अनंत प्रकार की जो सखियां हैं इन्हीं को केवल अधिकार है वो प्रेम को समझने का, और प्रेम को जानती जानने वाली वही है सखियां हैं। और इनकी कृपा के बिना किसी को भी ये तत्व जो है वो समझ में नहीं आ सकता है। और वो तो सहचरी है, नित्य सिद्ध जीव है सब, वो तो राधा रानी के साथ में रहते हैं, उनके साथ लीला में संलग्न रहते हैं, लीला में सहयोग देते हैं, उसमें सेवा देते हैं। तो हमारा उनका संपर्क और हमारे पर उनकी कृपा कैसे होगी। तो ये इतने करुणा वाले होते हैं राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में कि ये फिर जन्म लेते हैं हमारे आचार्यों के रूप में। जैसे मैंने बताया आपको कि ललिता जी जो इतनी प्रधान सखी हैं, हाँ, परमेश्वर सखियों के बीच में प्रधान है वो, राधा रानी के बाद नंबर टू ललिता ही हैं, उसके बाद विशाखा है, उसके बाद चंपकलता है। तो वो स्वरूप दामोदर के रूप में आते हैं और हमारे संप्रदाय में आचार्य बनते हैं। रामानंद राय के रूप में ललिता जी आती हैं, कृष्णदास कविराज भी मंजरी के अवतार हैं, रूप गोस्वामी भी रूप मंजरी के अवतार हैं, लबंग मंजरी के अवतार सनातन गोस्वामी हैं, गुण मंजरी जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आते हैं। और इसमें भी मंजरी एक सर होता है। राधा रानी की 8 प्रधान सखियां होती है, जो 8 यानी इतने क्लोज है, उसके ऊपर कोई है नहीं, स्ट्रेट राधा और कृष्ण है डायरेक्ट। तो वो एक एक सखी जो है परमेष्ठ सखी, उसके 3 मंजरियां असिस्टेंट होते हैं, हर एक की 3 होती है। और जैसे कि राधा रानी की प्रधान सखी जो है ललिता है, उसके आधिपत्य में 3 सखियां हैं, रूप मंजरी, लबंग मंजरी और अनंग मंजरी। इसमें अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन है और वो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी माधुरी लीला में राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं तो पुरुष रूप में कैसे करेंगे, इसलिए राधा रानी के घर में ही उनके माता के गर्भ से जन्म लेते हैं छोटी बहन के रूप में। और वो अनंग मंजरी जो है वो साक्षात जानवा देवी है, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है वो अनंग मंजरी का अवतार है। तो अनंग मंजरी भी जानवा देवी के रूप में अवतार लेती है ना। और वो जानवा देवी के रूप में अवतार लेकर तब तक शांत रहती है जब तक नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं तो जानवा देवी गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान आचार्य बन जाती है। और वही कृपा किंबहुना उससे अधिक कृपा, नित्यानंद प्रभु से भी अधिक कृपा जानमा देवी ने किए हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द मंजरी, तो ये एक एक मंजरी जो है कितनी हो गई, 8 × 3 = 24। तो एक एक मंजरी की 1 करोड़ असिस्टेंट गोपियां रहती हैं। तो एक सखी के पास कितने असिस्टेंट मंजरी हो गई, 3 करोड़, और पूरे मिलकर 24 करोड़, है ना, 3 × 24। और ये केवल फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है सखी मंजरी असिस्टेंट, इनके भी फिर सहचरियां असिस्टेंट होती है, उनकी सहचरियों की किंकरियां होती है, उसके बीच में गोपियां, गोपियां और सखी एक ही व्याख्या है, जो सदैव गो अपी यानी सदैव राधा रानी और कृष्ण के आनंद के लिए गौओं की सेवा में रहते हैं और गौओं के माध्यम से उनको आनंद देते रहते हैं, दूध दही माखन निर्माण करके, उनके चारण में मदद करके, उनका सुशोभित उनको सेवन करके, उनको श्रृंगार करके, उनको आनंद देके गौओं को, वो जो गौ सेवा में राधा कृष्ण की सेवा में गौ सेवा में मग्न रहते हैं उनको गोपियां कहते हैं। भाववाचक ये क्रियावाचक विशेषण नहीं है, भाववाचक विशेषण है। क्रियावाचक विशेषण कौन सा है, गिरिधारी, कौन सी क्रिया दिखती है कि उन्होंने गिरिधार को धारण किया था, गिरिधारी, माखन चोर, ये भी क्रियावाचक विशेषण है, बट गोपी ये भाववाचक विशेषण है। आपको समझ में आया ना, तो इस प्रकार से बिना सहचरी बने, अरे वो नहीं लगाया आपने हवा वाला, तो बिना सहचरी बने ये रहस्य समझना नामुमकिन है। तो वो सारे सहचरी गोपी मंजरी सखी वो अलग अलग आचार्य बनकर अलग संप्रदाय में आते हैं और हम जैसे लोगों को कनेक्ट कर देते हैं कृष्ण से, और जब उनकी सेवा करके जब हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करके, उनकी शिक्षाओं का पालन करके, तब जाकर ये कृपा होती है कि हमें कुछ कुछ समझना आरंभ हो जाता है। इनमें से कितने लोगों को ये तत्व समझना है, हाथ ऊपर कीजिए, लेकिन आधे लोग की पलकें झुक रही हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ आप सब लोग जल्दी उठे, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन अपने सारे अस्तित्व को कर्ण विभाग में केंद्रित कीजिए, ब्रिंग ऑल योर अटेंशन एंड सोल इन द ईयर्स, क्योंकि जब ठाकुर जी की कथा होती है ना, तो ठाकुर जी के विषय में साक्षात्कार कथा में से होता है, कथाकार की कोई योग्यता नहीं भी होगी तो कथाकार के माध्यम से मुमुक्षु अर्थात प्रामाणिक जिज्ञासु भक्त के लिए श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, कथाकार नहीं बोलता है। सामने का जो शत्रुवृंद है उनकी चेतना किस प्रकार की है, उसी प्रकार का वक्तव्य वक्ता के मुख से निकलता है। वक्ता कुछ भी पढ़ाई करके तैयारी करके बहुत सारी करके आया होगा, लेकिन उसके मुख से निकलता वही है जो श्रोतृवृंद के योग्यता के अनुसार ठाकुर जी बोलते हैं। दिस इज माई परमानेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि मैं क्या तैयारी करके आया हूं और क्या बोल रहा हूं। दैट सीक्रेट ओनली आई नो, नोबडी एल्स नोज, कि मैं क्या सोच के आया था और क्या बोल रहा हूं, है ना। तो इसलिए ये तत्व अगर समझना है राधा रानी का, या उनका तत्व और उनके राधा रानी के व्यक्तित्व में जो कृष्ण के लिए प्रेम है और उन दोनों का जो आदान प्रदान है, वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का ये सर्वोच्च परमोच्च विषय है समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव बीन गिवन ह्यूमन बर्थ, ये विषय को समझने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म दिया है, और उस विषय को समझने की शुरुआत आदो श्रद्धा तथा साधु संघ से होती है, रूप गोस्वामी के रूप मंजरी के अनुसार। इसमें एक विशेष बात आती है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। एक एक लाइन एक एक शब्द जो है ना वो बहुत वजनदार है, बहुत क्या कहते हैं पावरफुल स्पिरिचुअल वर्ड। गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से जो भी आता है वो पद्म वाक्य नहीं, भगवत प्रणीतम धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वो बिना कृष्ण के अनुकूलता के अलावा कुछ बात नहीं करते हैं, केवल कृष्ण के लिए अनुकूल और हमारे कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल क्या बातें हैं वही करते हैं, वही उनकी आज्ञा होती है, वही उनका वचन होता है, वही उनका प्रवचन होता है। ओके, तो उसको जब हम पालन करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसको उस आज्ञा को पालन करते हुए कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए भक्त कितना प्रयास कर रहा है। उस प्रामाणिक प्रयास को देखकर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उस सेवा करके जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता ही इस भाव का उगम है जिससे हम ये तत्व समझ सकते हैं। इस तत्व को समझने की शुरुआत उनकी प्रसन्नता की स्थिति से शुरू होती है और उसके बाद में एक बार प्रसन्न किया, दूसरी बार प्रसन्न किया, कुछ भक्त जो है उनको निरंतर प्रसन्नता ही में रखते हैं। कुछ भक्तों का व्यवहार ऐसे होता है, उतने समर्पित होते हैं कि गुरु जी की आज्ञा में ही जीवन को बिताते हैं। सर्वस्व गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य, नेक्स्ट लाइन। एक बार प्रसन्न किया फिर छोड़ दिया, दूसरी बार किया फिर छोड़ दिया, फिर बीच में गैप हो गया, फिर नहीं किया, फिर किया, सातत्य नहीं है। लेकिन सातत्य वाले जो भक्त हैं, चित्ते कोरिया ऐक्य, जैसे मैंने कहा आपको कि आपके अस्तित्व को कर्ण में ऐक्य कीजिए, एकत्र कीजिए, वैसे चित्त में गुरु जी की आज्ञा को जो ऐक्य करता है, इसके चित्त में गुरु की आज्ञा के अलावा और कुछ भी चिंतन नहीं है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या आरना कोरियो मने आशा, और कोई इच्छा जो है वो सब उसको प्रयत्न पूर्वक पीछे कर देता है। इच्छा तो है ना, इच्छा कहां नहीं है, इच्छा सब जगह बड़ी हुई है, बीच बीच में आती रहती है, जैसे बुद्ध की तरह हमारे निश्चय के बीच में भी एक बुद्ध आ जाता है, इच्छा का, माया की इच्छा का। आरना करियो, प्रयत्न पूर्वक उसको बाजू में रखे, जितना हो सके उतना ऐक्य 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 करते रहता है। उसका जीवन में क्या लाभ होता है, उसको गुरु जी के चरणों के प्रति रति निर्माण होती है, आसक्ति निर्माण होती है। यहां पर आचार्य बताते हैं कि ऐसे रसिक भक्तों के चरणारविंद के प्रति आसक्ति ही इस रहस्य में प्रवेश करने की गुरु किल्ली है, चावी है। तो ऐसे लगातार ऐक्य करके की हुई सेवा से गुरु जी के चरणों के प्रति आसक्ति हो जाती है, गुरु जी का ही आज्ञा जीवन का सर्वस्व बन जाता है। फिर क्या होता है, ऐसे चेतना से ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। सबसे पहले तो आत्मा की उत्तम गति होती है, वो आत्मा उन्नति करता है, आत्मा भगवान के चरणों की, राधा रानी के चरणों की ओर प्रगति करता है, उसकी यात्रा यशस्वी पद्धति से आरंभ होती है और वो अग्रसर रहता है उस मार्ग में उनकी कृपा से। और इस कार्य से उनकी निरंतर प्रसन्नता के कारण इस इनका प्रसाद प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आशीर्वाद क्या है, राधा कृष्ण के प्रति युगल प्रीति निर्माण होती है, ये उसका रूट है, रोड मैप ये है उसका। इसके आगे भी हमारे ब्रजवासी लोग बताते हैं, एक है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के विषय में ज्ञान, कृष्ण के उसमें रुचि आसक्ति, हाँ वो कृष्ण के स्तर पर है। लेकिन अगर राधा और कृष्ण के प्रति दोनों के बीच में संबंध जो है उसके प्रति आपको अगर अनुभूति साक्षात्कार चाहिए तो किसी ब्रजवासी की सेवा करके उनकी प्रसन्नता आपको ग्रहण करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। ब्रज रस ब्रजवासी ही जाने, इसके सिवा कोई नहीं जान नहीं सकता है। हम जो ये बातें कर रहे हैं ना वो एक स्तर की है, उसमें भी परमोच्च स्थितियां हैं, लेकिन उन परमोच्च स्थितियों के परे ब्रज का भाव है, क्योंकि ब्रज में जन्म ही वो लेते हैं जो परम परम अनेक जन्मों के अंतर प्रेम की सेवा, प्रेम पूर्ण सेवा करके प्रेम की परिपूर्णता जिन्होंने प्राप्त की है उनको राधा रानी ब्रज में जन्म देती है। और जन्म देने के पहले उनके मस्तिष्क में जो साक्षात्कार है कि कृष्ण भगवान है, इसको निकाल देती है, उसको छीन लेती है, उसको नष्ट कर देती है, हमारी भाषा में डिलीट कर देती है। वो जो नॉलेज है, जैसे हमारे दिमाग में नॉलेज कैसा रहता है, आरएनए डीएनए के बॉन्ड के रूप में रहता है, हाँ ये मेडिकल साइंस। आरएनए डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इनका जब बॉन्ड होता है ना तो वो बॉन्ड इज मेमोरी, वो जितना दृढ़ होता है उतना मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ब्रह्मचर्य से वो बॉन्ड जो है वो दृढ़ होता है, इसलिए ब्रह्मचारी लोगों की स्मृति अच्छी रहती है, अच्छी होनी चाहिए, उनका ब्रह्मचर्य का प्रमाण है। तो वो जो स्मृति है उसको राधा रानी डिलीट कर देती है। एक शक्ति है कृष्ण की जिसका नाम है जगन मोहिनी, उसका उल्लेख दशम स्कंद में आता है। वो जगन मोहिनी माया के माध्यम से कृष्ण और राधा रानी उन भक्तों के मस्तिष्क में या स्टोर मेमोरी बैंक में से वो नॉलेज निकाल लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि राधा और कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, और फिर वो जन्म प्राप्त करते हैं। फिर उनको केवल यही पता है कि मेरी सहेली है या राधा रानी, ये मेरा सखा है, ये मेरा प्रिय मित्र है, यही सब पता चलता है उनको। ये मेरा पुत्र है, ये नटखट बालक है, उसको दंड देना जरूरी है, उसको सिखाना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है। इस प्रकार की भावना हम केवल एक सामान्य व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में थोड़ी सोचेंगे इनको हम शिक्षा देंगे, इनको हम लोग अभी ट्रेनिंग देंगे, उनको अभी बड़ा करेंगे, अच्छी विद्या भी देंगे। वी डोंट थिंक लाइक दैट अबाउट गॉड। हमको पता है, अगर हमको पता है, भगवान पता है, तो भगवान सब ज्ञान के उगम है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब पता है, तो हम उनको कुछ सिखाएंगे जाके, उनसे सीखेंगे। लेकिन ये सब भाव का अनुभव करने के लिए भगवान और राधा रानी उनसे ये ज्ञान छीन लेते हैं, फिर उनको ब्रज में जन्म देते हैं, और फिर जाकर उन्हीं को ये ब्रज के असामान्य अद्वितीय असीम अमर्याद प्रेम का अनुभव होना शुरू होता है। और वो जो करते हैं वो वास्तविक प्रेम है, जो गौलोक वृंदावन में भी उसी प्रेम का प्रकटीकरण है, प्रकट वहीं पर वही प्रेम प्रकट है, वही प्रेम यहां पर ब्रज में प्रकट होता है। और अपने निजी चुने गिने चुने हुए भक्तों के माध्यम से ही ठाकुर जी और राधा रानी उस प्रेम को प्रकट करते हैं, और किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को हृदय से ब्रजवासी होना चाहिए। रहे हम कहीं भी, हम कहीं भी रह सकते हैं, पुणे में रह सकते हैं, अमेरिका रह सकते हैं, इंग्लैंड रह सकते हैं, कानपुर रह सकते हैं, बम्बई रह सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी चेतना कहाँ है, हमारा चिंतन कहाँ है, वो हमारा निवास स्थान तय करता है। आज भी, अभी भी, इस समय भी आपका मन किधर है, किस वस्तु पे लगा हुआ, किस वस्तु का चिंतन कर रहा है, आप वही हो, आपका निवास वही है। अगर कोई यहां पर बैठ के सोच रहा है कि मुझे अभी न्यूयॉर्क में जॉब मिला है, उसका वीजा के लिए प्रयास कर रहा हूं, कब वीजा मिलेगा, तो अभी आप न्यूयॉर्क में हो, इधर नहीं हो। जो भी आपका चिंतन चल रहा है वही आपका वास्तविक निवास स्थान है। तो अगर आपका चिंतन ब्रज में चल रहा है, ब्रज के विषय में चल रहा है, ब्रज के प्रेम में चल रहा है, ब्रज के लीलाओं में चल रहा है, ब्रज के स्थानों के आपने भेंट दी हुई है उसकी स्मृति में चल रहा है, ब्रज में की हुई सेवा में चल रहा है, उसकी याद आ रही है, तो आप ब्रज में ही हो। और ऐसे निवास स्थान जब ब्रज में होता है तो ब्रज रस की धीरे धीरे प्राप्ति होने लगती है। और उसमें भी एक रहस्य है कि ब्रज का चिंतन भी आप कर रहे हैं, और उसके साथ में अगर आप ब्रजवासियों की सेवा करते हैं निस्वार्थ होकर, तो वो ब्रजवासी जब प्रसन्न होते हैं तो ब्रजवासियों की प्रसन्नता में जो आशीर्वाद मिलता है उससे ये ब्रज रस, प्रेम का रस प्राप्त होता है, जो केवल राधा रानी वहां जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम रस भूमि है, उस प्रेम रस भूमि का जो कर्णमात्र प्रेम का लवलेश है वो हमको प्राप्त होता है। और ये सब सत्य है, ये सब अनुभव की बातें हैं। हमारे गुरु महाराज और उनके जीवन में हमने देखा है कि वो तो विदेशी है, और तो एक प्रकार से सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, उनको बॉडी ही विदेशी है, उनका मांस का, उसका शरीर का हर एक पेशी जो है वो वहां पर निर्माण हुआ है, गर्भ उनका जायगोट जो चार सेल होते हैं ना, वो चार सेल का जायगोट उधर बना हुआ है ना। लेकिन हमारा शास्त्र ये सिद्ध करता है कि जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, भाव से हमारी चेतना निर्माण होती है, स्वेच्छा से, कौन से भाव को हम अपनाते हैं। आज भी वो हिंदी नहीं बोलते हैं, तभी भी नहीं बोलते थे जब वहां पर पहुंचे थे, उनको घनश्याम बाबा ने कहा था कि आप बरसाने जाओ, आपको आगे की कृपा वहां पर होगी, क्योंकि घनश्याम बाबा भी एक सच्चे ब्रजवासी थे, जन्म से नहीं थे, क्रिया से, भाव से, एक सच्चे समर्पित, हाँ पूर्णता से, गहराई में समर्पित भक्त थे वो, इतना प्रेम से राधा गोपीजन वल्लभ को सेवा करते थे वो। उनको अपने भाव से रिचर्ड ने प्रसन्न किया, उसके फलस्वरूप रिचर्ड को उन्होंने कहा कि आप अभी बरसाने जाओ, वहां पर आपको श्री जी कृपा करेंगे। तो वहां जब गए तो 6 महीने वहां पर रहे, ना कभी इनको हिंदी आई, ना उन ब्रजवासियों को इंग्लिश आई, बट ये इतने आश्चर्य की बात नहीं है, उन 6 महीनों में उन्होंने घंटों 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 उनसे संवाद किया। वो हिंदी में बोलते थे, ये इंग्लिश में बोलते थे, और दोनों एक दूसरे के भाव को समझते थे। एक वृंदावन में भी गोस्वामी है, उनका नाम है राधेश लाल जी गोस्वामी, राधा वल्लभ मंदिर के वो अधिकारी हैं, गुरु जी हैं, वो तो भी 20-22 साल के थे, ये 19 साल के थे, 2-3 साल से बड़े थे, एक ही वह के उम्र का थे, जवान बालक थे। कहते हैं रात को हम लोग 8 बजे बोलना शुरू करते थे, संवाद करना, सवेरे 4 बजे तक हम लोग वार्तालाप करते थे। और आज भी उनको इतनी अंग्रेजी आती नहीं है और इनको हिंदी नहीं आती है। और वो कहते थे कि हमको इतना आनंद आता था उस संभाषण में, ये बोलते थे, हम भी बोलते थे, हम भी बोलते थे, ये भी बोलते थे। और फिर उसके कुछ समय के बाद में मैं उनके बीच में आ गया अनुवाद करने के लिए, और मैं फिर इनकी हिंदी इंग्लिश, इनकी इंग्लिश हिंदी, ऐसा करके क्यों कोशिश करता था। तो गुरुजी कहते थे कि आप अभी अनुवाद कर रहे हो लेकिन उतना आनंद नहीं आता है जितना बिना अनुवाद के हमारा संवाद होता था। दिस इज वेरी टिपिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेम की भाषा प्रेम की प्रेमी व्यक्ति ही जानता है। जो बालक जन्म लेता है तो माँ थोड़ी उससे बात करती है, माँ बात करती है उसको समझ थोड़ी आता है, वह तो भाषा सीखना बाकी है। लेकिन फिर भी माँ के हृदय का भाव वो समझता है, उसके हृदय का भाव माँ समझती है। जब वो दूध पिलाती है तो माँ का प्रेम का अनुभव करता है, और जब रोता है तो माँ को समझता है कि भूखा है। हर प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान होता है। हमारे घर में भी ऐसी बालिका थी, कभी एक शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, लेकिन हमारा उसका संवाद इतना परफेक्ट था कि हर चीज हमारी वो कम्युनिकेट करती थी, उसको क्या चाहिए, और हम भी उसका हर बात को समझते थे बिना किसी शब्द का उच्चारण करते हुए, क्योंकि वह हृदय की भाषा है। वो हृदय की भाषा प्रेम की होती है, हृदय में और कोई भाषा नहीं होती, ओनली लव। और जब ये प्रेम निर्माण होता है तो बिना भाषा के बंधन से, बिना शब्द के बंधन से, किसी भी बंधन के परे जाकर हम एक दूसरे की भावनाओं को 100% गहराई में समझते हैं। जैसे ट्रेन में कोई नवपरिणित जुगल जोड़ी बैठी हुई है, हम आप भी सफर कर रहे हैं साथ में, वो भी बैठे हुए हैं, तो वो ना इतनी धीमे से बात करते हैं कि बाजू के व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता है, और घंटों घंटों बात करते रहते हैं। तो कहते हैं जब प्रेम होता है तो आवाज और शब्दों का जो वॉल्यूम है वो कम 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 हो जाता है, और एक समय आता है कि शब्द ही बंद हो जाते हैं और केवल आंखों से और बॉडी लैंग्वेज से प्रेम व्यक्त होता है। जब प्रेम नहीं होता है तो शब्दों का वॉल्यूम बढ़ते जाता है। सच है कि नहीं बोलो, जितना लोग को लगता है सच है बोलो, जय श्री राधे। तो जब क्रोध आता है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि वॉल्यूम मैक्सिमम करो, अपने आप वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है। तो प्रेम है तो शब्दों को ज्यादा स्थान नहीं होता है, तो प्रेम नहीं है तो शब्दों की जरूरत पड़ती है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो स्पिरिचुअल लाइफ में जब प्रेम उत्पन्न होता है तो उस प्रेम के बीच में सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। गुनाहों को व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता है, गुनाह को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, अपराधों को वो समझता भी नहीं कि अपराध हुआ है। जब बालक किसी माँ को छाती पे लात मारता है तो माता उसको अपराध के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तूने मुझे लात मारा, मैंने तुझे दूध पिलाया, तूने लात मारा, ऐसे नहीं बोलती वो। वो खाना खिलाती है उसको, उसी के मुंह पर वो उल्टी कर दे कभी कभी, तो मैंने तुझे खाना खिलाया, तूने मेरे मुंह पर उल्टी किया, ऐसे नहीं बोलती कभी, क्योंकि प्रेम के प्लेटफॉर्म पर अपराध की स्वीकृति नहीं होती, प्रेम के प्लेटफॉर्म पर अपराध की क्षमा होती है। तो ये जो प्रेम का विषय है ना, ये ब्रजवासियों के हृदय में ठोस ठोस के भरा हुआ है, जो राधा रानी की कृपा से वहां जन्म लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रेम कितना कितना गहरा होता है। मैंने कई बार ना उधर मान मंदिर में राधाष्टमी, होली, ऐसे उत्सवों का समाज होता है वहां पर। समाज का अर्थ होता है कि एक साथ बैठकर कीर्तन करना, भजन गाना, उस उत्सव के अनुरूप जो भजन गाते हैं ना उसको समाज कहते हैं, और हर समय समाज होता है। कई बार समाज ऐसे होता है कि बरसाने के लोग नंदगांव जाते हैं और नंदगांव के गोसाई और बरसाने के गोसाई सामने लाइन से बैठकर अल्टून पल्टून भजन करते हैं। एक भजन ये गाएंगे तो उसी उत्सव का दूसरा भजन बरसाने वाले गाएंगे। कभी कभी गाते गाते वो नोक झोंक भी उनका होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, वो कुछ ताना देंगे गाने में तो ये गाने में ताना देंगे उनको, ऐसे उनका एक नोक झोंक नाम का उत्सव होता है। जो देखना वो कभी भी आप कभी देखोगे उसको तो उसका आप प्रवचन में वर्णन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इट, कि कैसे गीत में काव्य में बरसाने के लोग नंदगांव के लोगों को ताना देते हैं कृष्ण के नाम से, और कैसे राधा रानी के नाम से, वृषभानु बाबा के नाम से नंदगांव के लोग उनको ताना देते हैं, और ये चलते रहता है बहुत देर तक। उसको कहते हैं नोक झोंक, ये नोकते हैं तो ये झोंकते हैं। ऐसे ऐसे कई ब्रज के प्रसंग हैं जिनको कोई भी व्यक्ति शब्द में वर्णन नहीं कर सकता है। तो ये बात कहां से निकली थी बताइए। हाँ, तो ऐसे ही एक समाज में मैं बैठकर ध्यान से सुन रहा था, और ऐसे गंवार दिखने वाले, ऐसे क्या कहूँ आपको, क्या वर्णन करें, उनके कपड़े, उनके दाढ़ी जैसे, उनके बाल ऐसे, लगता है कि कोई फटीचर आदमी होगा बैठ के सुन रहा है। अचानक माइक उसके सामने जाता है, बाजा उसके सामने आता है, और फिर वो जो शुरू हो जाता है, इतनी ऊंची आलाप लगाता है, इतनी ऊंची आलाप तान देता है, इतने सुंदर भजन गाता है राधा रानी के प्रेम के प्रति, कि देखने वालों के आंखों से आंसू आ सकते हैं। इतनी शक्ति है उसके गायन में, इतना भाव, इतने गहराई है प्रेम के उसके अंदर। और एक नहीं, ऐसे कई लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाना शुरू कर देते हैं। ऐसे गंवार किसान दिखते हैं वो, लेकिन जब माइक सामने आता है ना, तो उनके हृदय के सबसे अंदर की कोने में जो भाव छुपा हुआ है वो बाहर प्रकट होता है विस्तारित होकर, और सारे बैठे हुए समाज को वो भाव विभोर कर देता है। तो उस समय मुझे एक अनुभूति हुई कि ये लोग हैं, इसलिए भारत का इस्लामीकरण या क्रिश्चनीकरण नहीं हुआ, इसलिए भारत को कोई किसी ने इस्लामी देश नहीं बनाया। इंडोनेशिया भारतवर्ष का हिस्सा था, इस्लाम देश बन गया। ईरान पर्शी पारसी लोगों का देश था, पूरे पारसी लोग रहते थे वहां पर, वो ईरानी ईरान हो गए, पूरे ईरान देश बन गया। ऐसे सारे देश, अफगान भी कंदाहार नाम का देश था, वो देश ही इस्लाम हो गया। कितने देश क्रिश्चियन हो गए, और भारतवर्ष में, भारत पूरे वर्ष को क्रिश्चियन और इस्लाम करने का इतना सारा प्रयास जबरदस्ती से और चीटिंग करके हर प्रकार से किया गया, लेकिन फिर भी ये देश पूरी तरह से इस्लामी या क्रिश्चियन क्यों नहीं हुआ? ऐसे लोगों के हृदय में छुपे हुए भाव की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि इस भाव को कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। ये भाव जिनके हृदय में है, जिस भाव को वो ऐसे उत्सव के समय पर प्रकट करते हैं, उसका प्रभाव इतना है कि कितना भी प्रलोभन दिया, कितना भी धन दिया, कितनी भी तलवार दिखाई, कितना भी सर काटे, फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये भाव भाइयों और बहनों हमारे जीवन का स्थाई भाव है, हमारा अधिष्ठान है, हमारा वैभव है, हमारा ऐश्वर्य है, हमें गर्व होना चाहिए ऐसा ये भाव है। कृपया इस बात को समझना आप, क्योंकि ये भाव अगर हमने नहीं समझा और समझकर नहीं अपनाया तो हम कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और कन्वर्ट होने में बुराई क्या है, क्योंकि वो सारे भाव को शून्य कर देता है, सारा भक्ति भाव समाप्त होता है उसमें। अगर वो क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में प्रेम होता भगवान का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर भी प्रेम है, वहां पर भी प्रेम है, नो प्रॉब्लम। आप यहां किस कमरे में गए तो उस कमरे में गए, नो प्रॉब्लम। बट नहीं है वो, प्रेम भाव केवल सनातन धर्म में है, बाकी धर्मों में केवल भगवान का भय है, गॉड फियरिंग फिलोसॉफी है सबकी। हमारी फिलोसफी गॉड फियरिंग नहीं है, हमारी फिलोसफी गॉड लविंग फिलोसॉफी। हम भगवान को प्रेम करने का मार्ग लोगों को सिखाते हैं, खुद अपनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, वही हमारा जीवन है, और इसलिए हमें इसमें टिके रहना चाहिए। कल मैंने भारत की व्याख्या बताना शुरू किया और बताना ही भूल गया मैं। भारत देश की व्याख्या क्या है? भा का अर्थ है राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम, और उस प्रेम में कितनी गहराई है, कितना विस्तार है, ये इस भा शब्द का अर्थ है। और रत का अर्थ है जिस भूमि में, जिस प्रदेश में राधा कृष्ण के प्रेम में लोग रत रहते हैं, मग्न रहते हैं, दिन रात विभोर रहते हैं, उस देश का नाम भारत है। तो कितने लोग आप ऐसे भारतवासी बनना चाहते हो? तो विदेशी कपड़े पहनना बंद करो, गर्व से भारत का परिधान पहनो, गर्व से भारत की भाषा बोलो, गर्व से भारत का शिष्टाचार अपनाओ, गर्व से भारत का भोजन खाओ, वो चाउमीन और नूडल फडल मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, पास्ता मत खाओ, फेस्टिवल में ये सारे भोजन को मत बनाओ, भारतीय संस्कृति का हर कदम उठाओ, खाने में, पीने में, बोलने में, पहनने में, चलने में, बोलने में, सारा भारतीय संस्कृति अनुभव। क्योंकि तो भारतीय यानी वो इंडियन कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हम, राधा कृष्ण के प्रेम के विषय के बारे में बात कर रहे हैं, वो भारतीय है। वो भारत ही अमूल्य है जो इस प्रेम के रहस्य को अपने हृदय में इतना बसाता है कि उसको कोई भी आतंक उखाड़ नहीं सकता है। हमारी संस्कृति है कि हम अपने केशों को स्त्रियां बांधती है, विदेश संस्कृति है उसको छोड़ देते हैं खुला। अरे भागवत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं पुतना का, आप पढ़िए उसको, वो कैसे चल रही है, हाँ यहां देख रही है वहां देख रही है, किसी को नजर दे रही है किसी को नजर मिला रही है, पुरुषों को भी रिस्पॉन्स दे रही है, इधर देख रही है बालों को यहां वहां उड़ा रही है, ऐसे झूम झूम के चल रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये चाल ये व्यवहार किसी सुसंस्कृत स्त्री का नहीं है। फिर भी सुखदेव जी वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राक्षसी है, उच्छृंखल है, शिष्टाचारहीन है, सुसंस्कृत नहीं है, फिर भी वो कृष्ण की ओर जा रही है, इसलिए उसका वर्णन करना योग्य है। शी इज गोइंग टू कृष्णा, शी इज ग्लोरीफाइबल। तो हम शायद इतने शिष्टाचार वाले नहीं होंगे, लेकिन हमको कृष्ण की ओर जाते रहना चाहिए, उस यात्रा में हमको सम्मिलित होते रहना चाहिए, वी शुड बी ऑलवेज इन दैट जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा। तो ये मैंने पुतना का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि उस समय पल्लू न लेना ये एक असंस्कृत होने का लक्षण था, और वो पल्लू लेकर नहीं चल रही थी, अपने बालों को खुले छोड़कर चल रही थी, सब पुरुष उसको देख रहे थे। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ये संस्कृति का लक्षण नहीं है, उसकी नजरें जैसे भिरभिरानी नजर, हाँ ऐसे 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 चंचल नजर थी उसकी, वो कहते ये भी सुसंस्कृत स्त्री का लक्षण नहीं है। और मैं केवल स्त्री के लिए नहीं कह रहा हूं, पुरुषों के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है संस्कृति। ये संस्कृति के आधार पर ही आपकी चेतना बनती है, कैसा पहनते हो, कैसा खाते हो, कैसा बात करते हो, कैसा रहते हो, मन में क्या विचार रखते हो, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है, उसी से आप बनते हो, इस तरफ या उस तरफ। इसलिए भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का दिल से हृदय से पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी बाह्य संस्कृति शरीर की संस्कृति एक्सटर्नल कल्चर से आपका इंटरनल कल्चर आध्यात्मिक आंतरिक संस्कृति बनने वाली है। केवल हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, हर सुबह दशहरा अपराध के बाद में हमें अभिष्ट सिद्धि हो जो है कृष्ण प्रेम करके हम हरि बोल करते हैं, लेकिन वो कब आएगी, वो कृष्ण प्रेम कब मिलेगा आपको, जब आप कृष्ण प्रेम जैसा अपनी संस्कृति को बनाओगे, विचारधाराओं को बनाओगे, व्यवहार को बनाओगे, वाचा को उस तरह से बोल्ड करोगे, तब जाकर उस अनुकूल आंतरिक स्थिति में कृष्ण प्रेम का अंकुर खिलेगा। केवल शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र सुनने से नहीं सुनेगा, अपने चरित्र में उस संस्कृति को उतारना पड़ेगा, तब जाकर ये कृष्ण प्रेम की संस्कृति, कृष्ण प्रेम की पल्लवी पल्लव आपके हृदय में अंकुरित होगा। विचार कीजिए इसके ऊपर आप, राधा रानी के उत्सव में हम लोग बैठे हुए हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कहां होगी, हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण से, हमारे पहराव से, हमारे विचारों से होगी। ये तो चर्चा चर्चा ही रहेगी, नोट्स नोट्स ही रहेंगे, किताब में रहेंगे, हृदय में कब प्रवेश करेंगे, नेवर। लेकिन हमें ये विचार करना जरूरी है कि हमारा देश कितना महान है। एक भारत की और एक व्याख्या है, जहां गायें निर्भय होकर विहार करती है, उसकी ये ब्रज की व्याख्या है। और एक समय था हमारा पूरा भारतवर्ष ब्रज था, जहां पर किसी भी गाय को वध का भय नहीं था, हत्या का भय नहीं था, हमले का भय नहीं था, जख्म का भय नहीं था, वो निर्भय होकर विहार करती थी। उनके थन जो थे ना, वो थन की जो वो जो निपल्स थे ना, वो जमीन को स्पर्श करके चलते थे। बोलो, कैन यू इमेजिन दिस, गाय के थन इतने बड़े हैं कि उनके आंचल जो है वो नीचे, जो मराठी में आंचल कहते हैं उसको, निपल्स, वो उसमें से राधा और कृष्ण के प्रति स्मृति के कारण दूध टपकता था, और वो जमीन को स्पर्श करते चलता था तो पूरी भूमि उस प्रेम भरे दुग्ध के सिंचन से गीली रहती थी। ये भारत भूमि की व्याख्या है जिसमें हमने जन्म लिया है। और राजा आज हर गाय जो है कुछ छोड़कर, सब भयभीत है, कब गला कटेगा पता नहीं। तो भारत भूमि की एक व्याख्या भी है, जहां गाय निर्भय होकर व्यवहार करती है। और ये स्थिति हमारे स्तर पर हमें पहले निर्माण करनी है, हाँ आप करो, आपको करना चाहिए, आप तो मंदिर के प्रेसिडेंट हो, आपके देश के प्रधानमंत्री हो, आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये सब बाद में की बात है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, पहले हम अपना काम शुरू करना चाहिए। आई रिपीट अगेन, जब तक कृष्ण प्रेम के अनुकूल हमारी चेतना का वातावरण नहीं बनेगा, तब तक भूल जाइए कि कभी कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। और जब हम निर्माण करेंगे प्रयत्न पूर्वक, समझ बूझ कर, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, जब हम ये कृष्ण प्रेम के लिए अनुकूल वातावरण, हर प्रकार की बाह्य संस्कृति, एक्सटर्नल कल्चर के द्वारा निर्माण करेंगे, तब हमारे कृष्ण को, राधारानी को ये विश्वास होगा कि हाँ अभी इसमें प्रेम का अंकुर मैं दे सकती हूँ। राधारानी से यही प्रार्थना करना है राधाष्टमी के दिन, आप हमारे पर ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में आपके प्रति, आपके लाला के, श्याम सुंदर के प्रति, प्रियतम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। और वो करने में सक्षम है, अश्वत्थामा को, इतने बड़े पाप किए हुए व्यक्ति को अगर वो प्रेम दे सकती है, हमने तो उतना पाप नहीं किया है निश्चित रूप से कह सकते हैं, हम भी पापी हैं, बहुत सारे पाप कर चुके हैं, लेकिन इतना जघन्य पाप जिसकी वजह से कृष्ण को भी प्रेरणा हुई कि इतना भयंकर श्राप दे दे उनको, उसे भी अगर राधा रानी क्षमा कर सकती है, और केवल क्षमा नहीं करती है, जाओ भाई क्षमा कर दिया चले जाओ, नहीं, प्रेम देती है, निवास देती है, ब्रजवास देती है, ब्रज भाव देती है, ब्रज की सेवा देती है, बताओ और क्या चाहिए जीवन में आपको, ब्रज में निवास दिया, ब्रज का प्रेम दिया, ब्रज के भक्तों का सेवा दिया, वहां का सेवा दिया ना वन की रक्षा करने की, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, परफेक्शन ऑफ लाइफ, उसके बाद में कभी उसने मांगा नहीं कुछ, और जो मिला वही संभलने में पूरा जीवन चल रहा है उसका, अभी भी चल रहा है अश्वत्थामा जी का, जो आज अश्वत्थामा परम शुद्ध परम संत भक्त है, वो निवास कर रहे हैं वहां पर ब्रजवासी के भाव में। तो ऐसे रसिक आचार्यों के चरणों में हमें आसक्ति होनी चाहिए, उनके आज्ञा पालन के माध्यम से, यहां हमारी विषय की शुरुआत हुई थी, और वो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव ये आचार्य रसिकों के अवतार हैं। किस रसिक के अवतार है पता होने की जरूरत नहीं है, हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि ये प्रेम रस से भरे हुए जो हमारे सहचरियां हैं, जो हमारे मंजरियां हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे ठाकुर जी के नित्य पार्षद हैं, वे ही हमारे जीवन में हमारे गुरु बनकर आए हैं, चाहे वो शरीर से विदेशी हों, भाषा नहीं बोलने वाले हों। मैं आपको ना पूरे शत प्रतिशत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब भी मैं गुरुदेव राधानाथ महाराज का प्रवचन सुनता हूँ, वो पक्के ब्रजवासी का भाव से बोलते हैं, ना उनका शरीर उसके अनुकूल है, ना उसकी वाणी उसके अनुकूल है, लेकिन शरीर वाणी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम शरीर वाणी है ही नहीं, यू आर नॉट दिस बॉडी, दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी, यू आर नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा वास्तविक ब्रजवासी है क्योंकि भगवान ब्रजवासी है कि नहीं बताओ, तो आत्मा में मूल भाव कौन सा है, साई भाव, प्रेम भाव, ब्रज भाव, यह आत्मा का मूल भाव है, और जो व्यक्ति साधना के माध्यम से वो भाव जागृत करता है वो ब्रजवासी हो जाता है, उसको शरीर का बंधन फलक नहीं पड़ता है, यहां तक कि उनका ब्रजवासी होना इतना प्रभावशाली है, मैं कहां बता रहा था आपको, घनश्याम बाबा ने उनको वहां भेज दिया, और वहां के लोगों ने 6 महीने उनका जो आचरण व्यवहार देखा उससे उनको ये अनुभूति हुई कि ये पक्के ब्रजवासी हैं। और भी कुछ कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, वो गौरव में कहते हैं, निंदा में नहीं। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का विचारधारा इतनी प्रभावी होती है कि सामने वाला आपकी भाषा भी नहीं जानता हो आपके भाव को पहचानता है, आपके भाव से केवल पहचानता नहीं है प्रभावित होता है, केवल प्रभावित नहीं होता, उस भाव से विभोर हो जाता है व्यक्ति सामने का, वो सामने के व्यक्ति पक्के जन्म से ब्रजवासी है फिर भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मैं देखता हूं ना जब जाते हैं महाराज जी वहां पर, लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं, कैसे बात करते हैं उनसे, कैसे उनके साथ हास्य विनोद प्रयास करते हैं, कितना गहरा रिश्ता है उनका बिना भाषा जाने हुए। हाँ 6 महीने रहे थे 1971 में, उसके बाद 15 साल वहां से दूर रहे, हो सकता है ब्रजवासियों को भूल जाना चाहिए, कोई आया था विदेशी 19 साल का बालक जटाधारी निकल गया यहां से, 15 साल के बाद लौटे ना तो क्या कहूं आपको, वो 15 साल के बाद में जब सबसे पहली मुलाकात हुई तो हम लोग उनके साथ में थे, 22 लोग, केवल 22 लोग एक विशिष्ट यात्रा में थे। वो किसी यात्रा में उनके साथ 22 लोग होना, या आज आपको सपनों में भी सपना ऐसा नहीं आ सकता, सपनों में भी सपना नहीं आएगा आपको कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसे हुआ है। तो वो 22 लोगों की यात्रा उनके घर पहुंची और जो भी कुछ वहां पर आदान प्रदान हुआ है उसकी किताब आएगी जो बहुत जल्दी वो लिखी है, तो हम देख सकते हैं कि वो प्रेम जो है वो चिरंतन प्रेम था उनका, 15 साल के बाद नष्ट नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। जो आदान प्रदान, जो प्रेम, जो भावना उनके प्रति है, क्या सोचते हैं उनके बारे में विदेशी होकर भी, ये बहुत ही असामान्य है। इसी को कहते हैं त्रिगुणातीत, व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। क्या है ये? है ये किसी भी देश, काल, जाति, स्थितियों का बंधन के परे जा हुआ संबंध है ये। किसी भी भौतिक लॉजिक से, तर्क से ये संबंधों को हम समझ नहीं सकते, हाउ इट इज पॉसिबल। रवि भी कई सालों के बाद जाते हैं, हमने खाली बताया कि इस बार आ सकते हैं, तो ऐसा लहर आ गया आनंद की वहां पर बरसाना के ब्रजवासियों में। वो यात्रा लेकर वृंदावन में आ रहे हैं, ऐसा खबर आती है बहुत पहले, क्योंकि लोग जाते हैं ना 1 साल पहले आश्रम बुक करने लगते हैं, तो आश्रम बुक करने आज सबको पता चलता है कि अरे इस बार तो इनकी यात्रा है, 8,000, 10,000, 12,000 ऐसी यात्रा का न्यूज जाता है ना, तो पूरा लोही बाजार एक सुसज्ज हो जाता है कि ये आएंगे, इनके भक्त आएंगे और खरीदारी करेंगे, सब जगह उनके उनका रिकॉर्ड बजाना शुरू कर देते हैं, एज इफ दे आर सो क्लोज टू राधानाथ स्वामी। ये तो एक भौतिक परिणाम है उसका, जो सूरज में छतरी पकड़ेंगे तो छतरी की छाया जमीन पर गिरती है, ये तो भौतिक परिणाम है। लेकिन उसका जो आंतरिक परिणाम है, जो आदर सम्मान जो विशेष रूप से उनके प्रति भाव ब्रजवासी एक्सप्रेस करते हैं, वो आंतरिक है। और ये मत समझना कि वो आप और हमारे लिए नामुमकिन है, फिर वैसी सृष्टि आप अंदर करेंगे अपने, तो वैसा प्रेम का वृक्ष वहां पर भी आएगा। और राधा रानी व्याकुल बैठी हुई है, आतुर बैठी हुई है, उत्सुक है वो प्रेम लोगों को देने के लिए, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा, योग्य व्यक्ति को मिलेगा। हमें योग्य होने का प्रयास करना चाहिए, और योग्य होने पर भी योग्य व्यक्ति कभी योग्य अपने आप को समझता नहीं है, अपने आप को अयोग्य ही समझता है, उसी पर राधा रानी की कृपा होती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ये सब क्यों बताया आपको, क्योंकि जो ब्रजवासी वहां जन्म लेता है वो इस प्रेम का निधि है, प्रेम का निधान है, वो स्टोर हाउस ऑफ दैट लव। और ब्रजवासी का जो प्रेम है ना, हाँ, तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि इतने लोग वहां पर गहराई में कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में रखते हैं, भले वो खेती कर रहे हैं, भले वो बैलगाड़ी चला रहे हैं, भले दिखने में कुरूप है, भले वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत गंवार दिखते हैं, व्यवहार भी उनका गंवार है, लेकिन उनके हृदय में जो प्रेम की ज्योति है ना, उसको देखना बहुत जरूरी है। हमारे आई कैंप में एक बार ना, ये आपको सुनाना बहुत जरूरी है बरसाना के लोगों का, हम लोग रात में राउंड लेते थे आई कैंप में, लेते हैं रघुवीर, कोई लोग परेशान तो नहीं है, ऑपरेशन के बाद दर्द तो नहीं है, किसी को कुछ कष्ट तो नहीं है, तो हम राउंड लेने एक बार गए थे, तो उस राउंड में बहुत ठंड का समय था वो, तो ऑपरेशन होके लोग ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी रजाई नीचे भी और ऊपर भी ओढ़ के सो रहे थे। तो जब हम टेबल के पास गए, नर्सिंग स्टेशन के पास, तो कुछ आवाज आई, राधे राधे राधे, ऐसा लगा कि कोई दर्द में पुकार रहा है, आंखों का दर्द होता होगा उसका ऑपरेशन के बाद में। तो हम लोग वो आवाज की दिशा में गए और देखा तो पूरा कंबल, वो जो है ना रजाई ओढ़े हुए हैं, वहां से आवाज आ रही है, तो हमने धीरे से रजाई को ऐसे ओढ़ा, तो क्या देखा, सुनना चाहते हो? वो जो व्यक्ति, एक नहीं अनेक व्यक्ति थे ऐसे, वो गहरी नींद में थे और राधे राधे पुकार रहे थे। इमेजिन, हम लोग पूरी नींद निकाल कर सुबह आते हैं फ्रेश होकर स्नान करके और हम जप करते हुए सो जाते हैं, और वो लोग इतनी गहरी में नींद में सो रहे हैं, उसमें राधे राधे पुकार रहे हैं, वो स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं। क्या क्या लगा होगा हमको उस समय, क्या मेरे मन में भावना, हमारे मन में क्या भावना आ गई होगी, अनएक्सप्लेनेबल, वी कांट एक्सप्लेन व्हाट वी आर वॉचिंग, कैसे वर्णन करें, क्या क्या उसका वर्णन करें, क्या निबंध लिखे उसके ऊपर, हाउ टू राइट एसे ऑन दैट, क्या है ये। इसे कहते हैं ब्रजवासी, बरसानावासी। तो राधा रानी के अत्यंत कृपा पात्र हैं, वही वहां जन्म लेते हैं, कि वापस इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद वापस नहीं आएंगे, वहां पर सीधे गौलोक जाएंगे। अभी भी गौलोक वासी भावना में रह रहे हैं और प्रत्यक्ष गौलोक पहुंच जाएंगे। वो बहुत कष्ट में रहते हैं, उनको बहुत जीवन में संकट आते हैं, पीड़ा होती है, धन की समस्या, बुद्धि की समस्या, विद्या की समस्या, हर प्रकार का संकट, हर प्रकार के चुनौतियां उनके जीवन में चलती रहती है। उनके जीवन में कोई धन नहीं होता है, क्योंकि धन के द्वारा राधा रानी उनको गर्वित नहीं करना चाहती। कोई सौंदर्यमय शरीर नहीं होता है उनका, ब्यूटीफुल बॉडी नहीं होती है जिसके द्वारा उनको गर्व न हो। उनके पास कोई पढ़े लिखे नहीं होते, विद्या नहीं होती है, क्योंकि वो राधा रानी चाहती नहीं कि वो यू नो कि विद्या से गर्व करें। जो जो चीज से गर्व हो सकता है उससे राधा रानी उनको वंचित रखती है, सामान्य रखती है, नम्र रखती है, ताकि उसी में उनका प्रेम का जो है परवरिश होती रहती है। इसलिए वो नींद में भी राधा रानी को पुकार सकते हैं। हमको कम से कम जगे हुए तो पुकारना चाहिए, बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। वो सुनती है, वो सबकी पुकार सुनती है। राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो भी परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, उसको राधा रानी के दरबार में आश्रय प्राप्त होता है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। जो सब जगह ठोकर खाते हैं, सब जगह से ठुकराए जाते हैं, तो वहां पर उनको आश्रय प्राप्त होता है। कितने भी आप पीड़ित हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी ठुकराए हुए हो, वहां पर आपको कभी भी निराश नहीं हुआ जाता, करने दिया जाता, कभी आप वहां निराश नहीं हो सकते हैं। कोई निराशा वहां पर टिक नहीं सकती, क्योंकि लाडली जी सबको सहारा देती है, वहां पर सबको सहारा देती है, सबको कृष्ण के योग्य बना देती है। इसलिए उनका नाम पुकारना जरूरी है। और आप बोलेंगे आप तो हमारे पास तो राधा रानी का नाम तो नहीं दिया है मंत्र के रूप में। नहीं, आपके पास जो मंत्र दिया है उसमें राधा रानी है। जो हरे हरे है ना, वो क्या है? वो राधा रानी है। राधा रानी का एक नाम है हरा, हरा शक्ति। हरा का अर्थ होता है कि वो सब कुछ जो गलत है उसका हरण कर लेती है। हमारे से जहां पर गलत है वहीं से गलत हरण कर लेती है, और जहां पर अच्छा है वहां पर क्या हरण कर लेती है? वो हृदय को हरण कर लेती है, कृष्ण का हृदय हरण कर लेती है, कृष्ण का हृदय को मोहित करके अपना बना लेती है। तो आध्यात्मिक जगत में हरा शक्ति का परिणाम हृदय की चोरी में होता है, भौतिक विषय में हरा शक्ति का परिणाम गलत वस्तुओं के हरण से होता है। अलाव करेंगे तब, हाँ पकड़ के रखेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? हरण कब होता है? जब हम छोड़ देते हैं, तो बोले ले लो हरण करो। तो वो हरा शक्ति को जब संबोधन करते हैं, जब पुकारते हैं, तो हरे हो जाता है। जैसे राम ने कैसे पुकारा था, हे सीते, नहीं सीता का संबोधन क्या हो गया? सप्तमी सीते। वैसे हरा का संबोधन क्या हो गया? सप्तमी हरे। तो सबसे पहले महामंत्र में नाम क्या आता है? हरे, फिर कृष्ण, फिर हरे, फिर कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण, फिर दो बार हरे। पूरी बार गिनती करोगे ना तो कृष्ण भी उतनी बार नहीं आया है और राम भी उतनी बार नहीं आया। राम हरे कितनी बार आया गिनो? आठ बार तो हरे आया है, सोलह अक्षरी में आठ बार हरे आया है, और चार बार कृष्ण और चार बार राम आया है। तो हु इज द विनर? हु इज विनिंग बाय द ऑस्पिशियस प्रेजेंस इन द महामंत्र बाय द साउंड वाइब्रेशन इज राधा रानी। हम लोग खाली रे 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 करते रहते हैं। हाँ कोई ना, सोलह माला फिनिश करना है ना अपने को, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ 16 राउंड फिनिश करना है। अरे कृष्ण रे 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 राम 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 रे 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 रे। अरे उसको अगर आप सही से पुकारोगे ना, वही जीवन सफल है आपका। और उसमें भी एक रहस्य है कि कृष्ण के पहले हरे को पुकारते हैं, राम के पहले हरे को पुकारते हैं, शक्तिमान के पहले शक्ति को पुकारते हैं, उसी के माध्यम से शक्तिमान तक हम पहुंच सकते हैं। तो पहले हरे फिर कृष्ण, क्योंकि जब हरे पुकारते हैं राधा के भाव से पुकारते हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण आपको देखे बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब उनके प्रियतमा का नाम कोई पुकार रहा है, हाँ रे 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 के भाव के नहीं, राधा रानी के भाव से अगर हरे कह रहा है कोई, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको लग रहा है विनोद है लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। जब तक हम सब लोग प्रेम से समझ बूझ के साथ, अनुभूति के साथ, जागृति के साथ, अवेयरनेस के साथ हरे को राधा के भाव से नहीं पुकारते हैं, तब तक कृष्ण आपको क्यों देखेंगे? आप एक वोकैबुलरी का शब्द कोश में से एक शब्द उच्चारण कर रहे हैं, वो क्यों पुकार देखेंगे आपको? शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं हम? शब्द के माध्यम से हम अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। शब्द का एक अर्थ भी होता है लेकिन शब्द का ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है, किस भाव से वो शब्द बोल रहे हैं आप। वो शब्द का अर्थ कुछ होगा लेकिन आपने गलत भाव से बोला तो वो भाव रिसीव किया जाएगा। शब्द का अर्थ एक है लेकिन आप अगर अलग भाव से उसको बोला किसी को तो वो अर्थ ग्रहण नहीं करेगा, आपका भाव ग्रहण जरूर करेगा। उसी प्रकार से हरे शब्द का उच्चारण राधा रानी के भाव से आप करेंगे तो तुरंत आपको कृष्ण मुड़कर देखेंगे। फिर कृष्ण को क्यों पुकारते हैं? कृष्ण को पुकारते राधा रानी आपको मुड़ के देखेगी। इस तरह से भक्त बहुत चतुर होता है, दोनों का नाम लेके दोनों को उकसाए रखता है, दोनों को उलझाए रखता है अपने आप में। चाहते ऐसा है कि हम उनमें उलझें, हमारी पुकार में वो उलझें, हम उनको पुकारें और वो हमारे में उलझे रहें ताकि हमारा कल्याण हो। क्योंकि ठाकुर जी जब किसी में उलझते हैं ना, विदुनोति सुरुच्छताम, विदुनोति का अर्थ क्या होता है? धुनोति का अर्थ क्या होता है? धुलाई करना। सिंपल लैंग्वेज, संस्कृत टू हिंदी। धुनोति का अर्थ है धुलाई और विधुनोति का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट रूपेण धुनोती। तो जब आप उनको बुलाते हैं हृदय में तो वो बैठ कर ना, हमारे जैसे आलसी नहीं होते भगवान, आते ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू करते हैं। देखते इतने सारे गंदगी है, साफ कर दूं इसको, इसने बुलाया है, बिठाया है, तो का कुछ काम तो करना होना चाहिए। हम लोग कहीं जाके आ जाके बैठ जाते हैं, सोचते कोई पानी ला के देगा, कोई प्रसाद ला के देगा, कोई पंखा चलाएगा, कुछ ना कुछ। लेकिन ठाकुर जी जब किसी जगह पे आते हैं तुरंत प्रेम का उनका प्राकट्य शुरू हो जाता है। इमीडिएटली द लव लव स्टार्ट्स फ्लोइंग क्विकली। तो ये श्लोक क्या है बताइए? विदुनोति सुरुचिताम श्रृण्वताम सुखताम कृष्ण पुण्यतीर्थ निशय बनात् हृदयंतस्य या भद्राणि विदुनोति सुरुचिताम। क्योंकि कथा के माध्यम से कृष्ण हृदय में आसानी से स्थापित हो जाते हैं। नाम के माध्यम से इतना आसानी से क्यों नहीं होते हैं? नाम में तो पूरी क्षमता है भगवान को स्थापित करने की, लेकिन नाम के माध्यम से इतने आसानी से स्थापित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा नाम आधा नींद में मिक्स होता है ना। जो नाम स्मरण निद्रा में मिक्सचर में होता है तो उसमें वो स्थापित कैसे होंगे? लेकिन कथा में मेरी आशा है कि आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और ज्यादा मन किसी का भी कथा में लगता है, नाम में नींद आ जाती है, तुरंत याद आती है कि मैं कितने घंटे सोया नहीं, कितनी जल्दी उठा, उसकी याद आती रहती है बार बार। हाँ, राधाष्टमी में चार बजे उठाऊं, इस याद से ही नींद आने लगती है। वैसे नींद की आवश्यकता नहीं है लेकिन वो स्मृति ऐसी पावरफुल है कि आज मैंने इतना निद्रा का त्याग किया है और मैं भगवान नाम ले रहा हूं, तो निद्रा को हम बोलते आ जाओ गोद में बैठ जाओ। तो वैसे नाम उच्चारण करने से भगवान, सॉरी कथा सुनने से हृदय में आके बैठ जाते हैं और फिर वो दुनोती स्वच्छता आरंभ कर देते हैं, हृदय को पवित्र करने लगते हैं। तो हरे कृष्ण हरे राम ये कहने से दोनों को हम बुलाते हैं। देखो सबके हृदय में परमात्मा है, है कि नहीं? सब जीव के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं, तो हमारा आधार परमात्मा है। लेकिन परमात्मा कैसे बैठे हुए हैं? वो राधा रानी के आधार से आपके हृदय में बैठे हुए हैं। वो परमात्मा का आश्रय स्थान, आधार स्थान राधा रानी है। जब आप कृष्ण को हृदय में बिठाना चाहते हो, बिठा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली राधा रानी भी वहां पर उपस्थित है, क्योंकि वो जो हृदय में आपको आपके बसना चाहते हैं, बसे हुए हैं, उनका आधारशिला जो है वो राधा रानी है। क्योंकि राधा रानी ये आश्रय विग्रह है, कृष्ण विषय विग्रह है, वो हमारे प्रेम का विषय है, जिन पर प्रेम करना चाहिए, और उस प्रेम का आश्रय जो है वो राधा रानी है, जो उनका भी आश्रय है, हमारा भी आश्रय है। इसलिए राधा रानी के श्री चरणों में जो चिन्ह है उसमें एक महल का चिन्ह है, देखा है आपने कभी? राधा रानी के चरणों के चित्रपट आएंगे, आज व्हाट्सएप पे बहुत सारे आएंगे, उसमें एक महल का चिन्ह है। महल में क्या करते हैं हम लोग, रहते हैं, वी स्टे पीसफुली अंडर शेल्टर, अंडर द रूफ, वहाँ पर आंधी तूफान का परिणाम नहीं होता है, आराम से रह सकते हैं। तो वो आश्रय तत्व जो है उसका मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोच रहा हूँ कथा शुरू कब होगी, हाँ मैं तो सोच रहा हूँ क्या होगा अभी, कोई बात नहीं। तो जो कृष्ण जो ही इज ऑल स्ट्रांग है ना, सारा बल उनके अंदर है, सारा बुद्धि उनके अंदर है, सारा सौंदर्य उनके अंदर है, सारा ज्ञान उनके अंदर है, इतने सॉलिड पर्सनालिटी कृष्ण है, है ना, हर चीज उनके अंदर अमर्याद असीम मात्रा में है। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो स्थिर होना चाहिए ना, जिनके पास इतना सारा है वो स्थिर होना हमारी उम्मीद है। तभी हम, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है तो वो स्थिर होता है, वो बेफजूल की बड़बड़ नहीं करता है, एक वाक्य बोलेगा तो भी हजार शब्दों के बराबर होता है, क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ है। मटका भी कैसा है, जो भरा होता पानी से तो एक जगह खड़ा रहता है, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा एक ग्लास होता है तो वो ऐसे ऐसे डोलता है, आवाज भी बहुत करता है ना। समुद्र में जो कहते हैं ना, उथल पाण्यास खड़खड़ाट फार, यानी जहां पर किनारे में खड़े रहते हैं बहुत सारी लहरें आती रहती है, बार 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 आती रहती है, गहराई में जाओ कोई लहर नहीं आते उधर। ये उदाहरण नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया है रूप गोस्वामी ने, ओरिजिनल उसमें दिया हुआ है कि गहरे समुद्र में कभी लहरें नहीं आती है, लेकिन जहां पर कुछ गहराई नहीं होती है वहां पर बहुत सारी लहरें आवाज ध्वनि सब आते रहता है, बुड़बुड़े बुदबुद सब आते रहता है। तो ये इतने महान व्यक्तित्व है, इतने भरे हुए हैं, इतने सघन हैं, इतने संपृक्त हैं, तो हम उनके स्थिरता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही राधा रानी की एक नजर उन पे आती है तो वो अस्थिर हो जाते हैं। जो अपने मुरली की तान से चर अचर सृष्टि को मोहित कर देते हैं, केवल चर सृष्टि यानी जीव सृष्टि को नहीं, जीव सृष्टि में कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा से लेकर शिव से लेकर जितने सारे जीव हैं वो सब देवता देवी सब पंछी मच्छर कीटक मछली मनुष्य प्राणी कितने प्रकार के जीव हैं, वो सब प्रकार के जीव उनकी मुरली की तान सुनकर भ्रमिष्ट हो जाते हैं, चाहे वो भक्त नहीं हो लेकिन वो पागल हो जाते हैं बिल्कुल। वो जब राधा रानी की ओर से उनको एक नजर आती है, एक दृष्टि कटाक्ष होता है उनके ऊपर, हाँ तिरपा कटाक्ष, हाँ क्या कहते हैं उसको, साइड लॉन्ग ग्लांस जब उनके ऊपर आता है या कोई उनका शब्द उनके मुख कमल से निकलकर उनके कानों में गिरता है, तो कहते हैं स्थिरता से मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण के हाथ से मुरली फिसल जाती है और वो भाव विभोर हो जाते हैं और वो पागलों की तरह बावड़े हो जाते हैं। जब कोई राधा रानी का नाम, अभी राधा रानी को तो बाजू में रखो, अभी वो कुछ देख भी नहीं रही है कुछ बोल भी रही है, उसका नाम जब कोई लेता है राधा रानी का, तो रा कहने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और धावत धा कहने से धावत यैव ससंभ्रमः, वो पागल होकर ससंभ्रमित, एक होता है संभ्रम एक होता है ससंभ्रम यानी विशिष्ट रूपेण, वैसे ससंभ्रमित होकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागते हैं कि कौन मेरे प्रियतमा का नाम ले रहे हैं। तो ये राधा नाम का प्रभाव है, केवल उनके ध्वनि से उनके नाम उच्चारण से उनके वाणी से उनके तिरछी चितवन से ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। परम भगवान को पूरे ब्रह्मांड में उनके अस्तित्व को उनके अथॉरिटी को उनके अधिकार को कोई छेड़ नहीं सकता है, नोबडी कैन चैलेंज हिज अथॉरिटी एंड पोजीशन। एक ही व्यक्ति अपने प्रेम के प्रभाव से उनको विवश कर सकती है, ही बिकम्स हेल्पलेस, और कोई इस विश्व में ताकत नहीं है जो श्री कृष्ण को विवश कर सके, हेल्पलेस कर सके। आप देखिए उनके ब्रज की लीला को देखिए, कैसे चुल्लू भर छाछ के लिए नाचते रहते हैं, वो पागलों की तरह नाचते रहते हैं, ऐसे बावड़े होकर बरसाने की गली में खड़े रहते हैं, हाँ कुछ काम नहीं है, गाय भी साथ में नहीं है, वो कहीं चल रही है, ऐसे ही आके बरसाने की गली में खड़े हैं। तो बरसाने के पुरुष जो ब्रजवासी है वो पूछ रहे हैं, अरे कहाँ है रोए, कहाँ कर रोए तू, बोले कचू ना कर रोए, कंकड़ बिन रो मैं। मतलब ऐसे दिखाए, कोई आया ना कोई ऐसा, तो अचानक ऐसा लगता है कि कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, रोड साफ कर रहे हैं। लेकिन वो चले गए तो फिर देखने लगते क्या देख रहे हैं, वो राधा रानी कब आएगी, कहाँ से आएगी, और आएगी तो मैं कंकड़ बाजू करूंगा तो पैरों में नहीं लग जाए। ऐसे बावड़े होकर हमारे कन्हैया जी नंदगांव छोड़कर ज़्यादा समय वहाँ रह नहीं सकते हैं, वहाँ से आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। ऐसे बोलते ना बिना पर्पज़ के, कोई बोलते ना लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, ऐसा होता है ना बहुत बार, कुछ लोग काम ही नहीं करते, ऐसे भाई यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, सो मच बिजी यार, बट एक्चुअली जैसे बंदर होते हैं ना वृंदावन के, दे लुक सो बिजी एक्चुअली, बट वॉट आर दे बिजी इन डूइंग नथिंग। वो कुत्ता भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं ना, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, उधर भोग रहे हैं, उधर भोग रहे हैं, पर कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे, यूजलेस थिंग। वैसे हमारे श्री कृष्ण जो है बिना, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे डोल रहे हैं, बावड़े होकर डोल रहे हैं। ये उनकी स्थिति है ब्रज में, क्योंकि जो प्रेम करता है और जहाँ से प्रेम का उगम होता है वही उनका बावड़ा होना, विवश होना आरंभ हो जाता है। वही प्रेम अगर किसी भक्त के द्वारा मिलता है वहीं पर भी पागल हो जाते हैं। देखो बिल्वमंगल ठाकुर आए थे ना, ठोक ठोक के ऐसे आ रहे हैं, ऐसे पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके, अरे बाबा, उनका हंसी विनोद भी कर रहे हैं उनके साथ में। कितने घर के झोपड़ी में जाकर वो नरसिंह मेहता गा रहे हैं, उनके बैठ के सुन रहे हैं उनका भजन। प्रेम, प्रेम के लिए आकर्षित होते हैं वो, प्रेम के लिए पागल हो जाते हैं, और प्रेम करने वाले भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, एनीथिंग यू कैन डू फॉर द सेक ऑफ द पीपल हु लव देम। तो ये प्रेम जो है ना वो होना चाहिए। बाकी साधन, कर्मकांड का फल, ज्ञान से विरुक्त विरक्ति, योग से इंद्रियों का दमन, योग से परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब कुछ हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार करने से कुछ नहीं होता है। प्लीज लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जैसे यू नो प्रधानमंत्री, आई नो प्रधानमंत्री, यू ऑल्सो नो प्रधानमंत्री, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। होता कब है, जब आपका उनका संबंध बनता है। तो कभी आपके घर पे खाकड़ा पापड़ी जलेबी खाने के लिए आ गए तो आपका संबंध बनेगा, फिर आप कुछ बोलेंगे वो आपके लिए करेंगे, फिर आपकी जलेबी की याद करेंगे, फिर आएंगे, फिर बनेगा, फिर आप फोन करेंगे मैं आ रहा हूँ तो आपके लिए वेट करेंगे। यानी जानने से कुछ नहीं होता है, संबंध बनाने से कुछ होता है। तो इसलिए ये जितने भी मार्ग है ना, कर्मकांड के, ज्ञान के, अष्टांग योग के, राजयोग के, सहज योग के, ध्यान योग के, जितने भी बताए, ये सब की परिणति क्या है, ओनली साक्षात्कार, ओनली नॉलेज की भाई है वो, ये परमात्मा है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, कण के बीच में व्याप्त है, सर्वव्याप्त है, सर्वगता है, हाँ सर्व है वो। लेकिन उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं होते, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज, व्हाट ही लाइक्स टू डू, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती उससे, वहां तक आपको छोड़ देते, जाओ आप जो करना है करो, मोक्ष ले तो मोक्ष लेके चले जाओ या तो वापस चले जाओ, वहां के आगे हमको पता नहीं है। ये किसी भी योग में वो शक्ति नहीं है आगे पहुंचाने की, क्योंकि इन सारे योगों में एक चीज होती है जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, वो पता है आपको क्या है, आपका स्वार्थ, आपका अपने आप में आपका केंद्र स्थान में होना, आई एम द सेंटर, बिकॉज आई वॉन्ट मोक्ष, आई वॉन्ट कर्मफल, आई वॉन्ट परमात्मा रियलाइजेशन, ये आई वॉन्ट स्पिरिचुअल है लेकिन सब आई वॉन्ट के क्षेत्र में ही है, इसलिए उसमें साक्षात्कार तक ही परिणति होती है। जब आई हृदय के सिंहासन से उतरता है और उस सिंहासन पे राधा और कृष्ण को बिठाते हैं, फिर उससे आगे की जर्नी शुरू होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति की महिमा क्या है, वो भक्ति राधा रानी का मूर्तिमान स्वरूप है, उसका नाम एक भक्ति देवी है, शी इज अ सोर्स ऑफ ऑल भक्ति। यहां से भक्ति का कण कण जो हमारे आज अंदर उपस्थित है वो वहीं से आ रहा है, राधा रानी की कृपा से आपके हृदय में आकर बैठा हुआ है। किस संत ने आप पर कृपा किया, उसकी सेवा आपने की है, उसको प्रसन्न किया है, उसकी आज्ञा का पालन किया है, किसी भक्त के निर्देश का पालन किया है, उसी एक प्रसन्नता के कारण उन्होंने आपको बीज दिया है हृदय में, उन्हीं की ओर से आता है। तो वो जो भक्ति है उसका एक विशेष स्वरूप, एक गुणधर्म क्या है कि वो भक्ति के मार्ग में हम केंद्र स्थान में नहीं होते हैं, जो सेव्य है जिसकी भक्ति हम करते हैं वो केंद्र स्थान में होते हैं। जब हम उतरते हैं और उनको वहां बिठाते हैं और उनके चरणों में हम बैठ जाते हैं, वहीं से भक्ति शुरू होती है। और क्योंकि भक्ति निस्वार्थ निरपेक्ष होती है, उसमें किसी मोक्ष की, किसी साक्षात्कार की, किसी स्थिति में पहुंचने की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए भगवान रिझते हैं। जब तक मुझे चाहिए आध्यात्मिक अनुभूति ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे चाहिए जब तक ये होता है तब तक वो उनका रिझना नहीं होता है। इट डजंट गेट प्लीज्ड। जब कोई निरपेक्ष भावना से एक रोटी भी खिलाता है उनको ना, तो सब कुछ छोड़ के वो खाने को आते हैं। विदुर के घर में क्यों गए? केले का छिलका खाने के लिए। वो चाहती तो केला देने के लिए, लेकिन दे रही छिलका और वो खा रहे हैं। और इतना क्या त्याग दिया यहां पर? 56 भोग त्याग दिया। क्यों? वो तो बहुत बढ़िया था, आनंद वाला चीज था, वो गिन चुन के उसके फेवरेट आइटम बनाए थे वो। लेकिन वो छोड़कर वो प्रेम के पुजारी विदुर के घर पहुंचे विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाने के लिए। विदुर आके रोकते हैं, कहते तुम चुप बैठो, इस प्रेम के आदान प्रदान में बाधा मत डालो, जो चल रहा है वो सही चल रहा है, केले फिकते रहने दो, छिलका आते रहने दो, वी आर रेडी, आई वॉन्ट दिस ओनली। तो केले तो मैंने कहीं खा चुके हैं, लेकिन छिलका में जो आनंद है आज वो कहीं भी नहीं मिला आज तक। ये है, तो ये जो रहस्य है ये हमको समझना चाहिए। राधा रानी का तत्व का रहस्य ये है, जब उनके प्रियतम को हम अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाते हैं सर्वस्व के रूप में, उनके शरणागत हो जाते हैं, राधा रानी भी आपकी हो जाती है, वो भी आपको हमको अपना बना लेती है। अपनार बोली, और हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली आपकी कृपा चाहिए बस। मांगू मैं तेरी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, बस वी वॉन्ट ओनली वन थिंग, योर मर्सीफुल ग्लांस। क्योंकि वो जो मर्सीफुल ग्लांस है आपका, वो साक्षात कृष्ण को बांध देता है। एक ब्रजवासी भजन है, उसमें लिखा है कि योगी खोजत, तपी खोजत, ध्यानी खोजत, हाँ कर्मी खोजत, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं भी उनको नहीं परमात्मा नजर आ रहा है। तो आगे की लाइन क्या है कि वो जो परमात्मा है वो उसको गोपियां अपने बालों की लटकन में बांध के ले जा रही है। ताको बांधियो तेने लटकन में, अपने बालों की लंबी जो चोटी होती है ना, वो वेणी बनाते हैं ना, उसके अंदर बांध के उसको लेके जाते हो। वो परमात्मा जो जिसके 20 नाखूनों से निकलने वाले अनंत कोटि किरणों में से एक किरण भी ऐसे ध्यानी तपित योगियों को दिखाई नहीं पड़ता है। नाखून तो छोड़ ही दो, वो दूर की बात है बहुत, नाखून उसका सोर्स है, उधर तक पहुंचे नहीं अब तक। ऐसे नाखून जिनके पैरों में है, ऐसे पैर जिनके शरीर के अंग है, ऐसे पूरे ठाकुर जी जो है वो बांध कर उसको घसीट कर लेके जा रहे हैं। क्यों? प्रेम से, प्रेम ही शक्ति है। तो ऐसे स्थिर कृष्ण जो है वो राधा रानी के एक तिरछी चितवन से उनकी मुरली स्खलित हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं। अभी धर्म संस्थापनार्थ ये भगवान आए है ना, जगत को सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, भक्तों के लिए अनुकूल स्थिति निर्माण करने के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए कृष्ण आते हैं। राधा रानी क्यों आती है? राधा रानी आती है, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, प्यारो जी की हृदय हार। केवल वो कार्य को करने के लिए आने वाले कृष्ण का सहारा बनकर उनके हित कारण, उनके हित के लिए राधा रानी आती है, और कोई पर्पज नहीं उनका। जहां मोहन आते हैं उन मोहन के हित के लिए राधा रानी आती है। जो बड़ा कार्य करने आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको प्रेम से संपृक्त करने के लिए राधा रानी आती है। एक और भी भाव ब्रजवासी देते हैं, वो कहते हैं राधा और कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, वो ब्रज में वो नित्य लीला करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। फिर भी वो आने का जो लीला है वो क्यों करते हैं? वो हम आप जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके लिए आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ताकि हमें कुछ वस्तु मिले ना, विषय मिले ना, कुछ चर्चा करने के लिए हमें कुछ चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कुछ विषय प्राप्त हो, डिस्कस करते रहे हम उसके बारे में, हमारा कल्याण हो, इसलिए वो अवतार यानी अवतरण की लीला करते रहते हैं। अवतार तो है नहीं, वो स्वयं कृष्ण है, भगवान है, राधा रानी भी स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भी स्वयं कृष्ण है। तो ब्रजवासी कैसे बोलते हैं राधा रानी के जन्मस्थल पर, चलो चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु महाराज के महल में चलो। क्यों? क्योंकि वहां पर आज धर्म समसा पदार्थाय जो कृष्ण आए हैं, मोहन आए हैं, उनके हित के लिए, उनके हृदय का सपोर्ट बनकर राधा रानी ने जन्म लिया है, इसलिए उनको बधाई देने चलो। कितनी भाग्यवान है वृषभानु महाराज, वो ये नहीं सोच रहे चलो हम जाके पैसा मांगे उनसे, हम जाके उनको विद्या मांगे, जाके लड़की को पति मांगे, या हम पुत्र प्राप्ति करने के लिए उनसे वरदान मांगे। अरे आए हैं, हमारे गांव में आए हैं, राधा रानी को जाके निवेदन दे दे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, इतना आसान हो गया, अभी इतना दूर थे पहले आसान सामने ही प्रकट हो गए। नो, नोबडी इज डिजायरिंग एनीथिंग मटीरियल कि मुझे क्या मिलेगा, वो केवल प्रेम प्रकट करने के लिए, बधाई देने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि श्री राधा रानी, अभी लेट अस स्टार्ट, चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो राधा रानी के जन्म की बहुत सारी कहानियां हैं और वो सब सच है। वो लगता है कि ये अगर सच है तो ये सच कैसे हो सकता है, ये हमारे लिए हो सकता है कि अगर आपने, मैंने कहा कि मेरा जन्म ना वर्ली में मुंबई में हुआ था और फिर मैं उनको बताया कि मेरा जन्म दिल्ली में कनॉट प्लेस में हुआ था, तो आप बोलेंगे दोनों में से एक सच है एक झूठ है ना। लेकिन कृष्ण के बारे में ऐसे कहेंगे तो दोनों सच है, क्योंकि कल्प भेद के अनुसार सारे जो भेद होते हैं ना वो कृष्ण में समाहित हो जाते हैं, वो असत्य और सत्य और भेदाभेद नहीं रहता है उनके अंदर, वो अचिंत्य अभेद भेद तत्व है। तो एक कथा ऐसी आती है पद्म पुराण में कि जैसे सीता देवी के जन्म के पहले जनक महाराज यज्ञ कर रहे थे और जमीन को जोत रहे थे, तो वो जमीन को जब जोत रहे थे तो उसमें से वो सीत यानी एक ऐसे कैस्केट यानी डिब्बी, ऐसे आप कह सकते हैं डिब्बी बनी, डिब्बी छोटी होती है लेकिन जैसे जो धनुष बाण रखना हो तो कितना बड़ा बॉक्स होगा है ना, तो उसको भी कैस्केट ही कहते हैं। तो वैसा एक कैस्केट यानी एक क्या कहेंगे उसको हिंदी में, हाँ बॉक्स कह सकते हैं, संदूक कह सकते हैं, ऐसे उनको वो हल के नोक पे मिला, तो उन्होंने खोला तो उनको सीता देवी की प्राप्ति हुई, फिर वो लेके घर पे गए। वैसे ही वृषभानु महाराज यज्ञ करने जा रहे थे, तो यज्ञ भूमि को जब यज्ञ करते हैं तो राजा को अपने हाथ से सोने की कुलाड़ी लेकर उसको जोतना होता है, उसकी मशागत करनी होती है। तो वृषभानु महाराज जब ये यज्ञ के लिए यज्ञ भूमि का शोधन कर रहे थे, उसका राइट वर्ड है शोधन करना, हम लोग कहते हैं मशागत, प्लाउइंग कहते हैं, लेकिन वो शोधन कर रहे थे, तो उसमें उनको राधा रानी प्राप्त हुई। अचानक बहुत दिव्य स्वर्णमय प्रकाश प्रकट हुआ, तो देखा तो एक बालिका है, उसको उठाकर वो ले गए घर। उसमें एक सुंदर बात है, मैंने कथा बाद में बताता हूँ कथा, वो मुझे प्रश्न आ रहा था कि अरे वो कथा में वृषभानु की पत्नी यानी कीर्ति मैया और नंद महाराज की पत्नी यशोदा मैया दोनों प्रेग्नेंट है और दोनों यमुना किनारे गोकुल में मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग समवेयर इन बिटवीन, दोनों का जन्म नहीं हुआ है लेकिन दोनों गर्भवती हैं, तो दोनों एक दूसरों को यमुना किनारे मिलते हैं गोकुल में और क्या कहते हैं कि तुझे अगर लड़का होगा और मुझे लड़की होगी तो मेरी लड़की का ब्याह मैं तुम्हारे लड़के से करूंगी, और अगर तुम्हें लड़का हुआ और मुझे लड़की हुई तो भी करेंगे, यानी अगर आपको लड़का हुआ मुझे लड़की हुई तो भी करेंगे, आपको लड़का हुआ मुझे लड़की तो भी करेंगे, हमारा ये वादा पक्का रहा ना? तो मुझे लगा अरे मैंने तो कीर्तिदा के गर्भवती होने की कथा नहीं सुनी है कभी, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये कथा से ये अभी सिद्ध हो गया कि पद्म पुराण में क्या लिखा है कि जब वृषभानु महाराज वो राधा रानी को लेकर जब पहुंचे तो कीर्ति मैया गर्भवती थी और उनके गर्भ से ही वो जमीन के अंदर सीत में प्रकट हुई थी। तो कहते हैं कि कीर्ति मैया को बहुत 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 मीठी मीठी पीड़ा हुई प्रसूति की यानी डिलीवरी की, जब ये बालक या बालिका उनके हाथ में दी गई तो शी फेल्ट लाइक शी एक्चुअली डिलीवर्ड दिस बेबी, शी हैड दैट फीलिंग विद इन हर, एंड ऐसा बार बार आचार्य कहते हैं कि शी वॉज नॉट इन पेन, शी वॉज नॉट हैविंग पेनफुल फीलिंग ऑफ डिलीवरी, शी वॉज हैविंग वेरी हैप्पी, कभी कभी होता है ना वो प्लेजरेबल पेन, लेबर ऑफ लव बोलते हैं ना हम लोग, लेबर ऑफ लव, वो कष्ट तो हम कर, लेकिन इतना आनंद आ रहा है उसके अंदर, इतना अपने प्रियतम के लिए हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड लेबर ऑफ लव। तो वैसे माँ के लिए भी डिलीवरी इज लेबर ऑफ लव, इट्स लेबर बट इट्स लेबर ऑफ लव बिकॉज माय चाइल्ड इज कमिंग आउट। तो वैसे प्रेम के लेबर की प्रसूति की अनुभूति उनको हुई जब उनके गोद में बालिका आई। और कहते हैं नंद ऋषभानु महाराज का जो महल था गोकुल में और रावल में, वो रावल नाम का एक अर्थ है महल बाय द वे, जहाँ पर राजा रहता है उसको रावल कहते हैं, और गांव का नाम क्या है मुख्य रावली। तो वहाँ पर कीर्तिदा के गोद में जब राधा रानी ने प्रवेश किया तो हजारों कोटि सूर्य के प्रकाश उनके महल में फैल गया था। सूर्य भी हतप्रभ हो गए उनकी तेज को देखकर, लज्जित हो गए। चंद्रमा का तो कहना ही क्या, चंद्रमा तो सूर्य से प्रकाश लेता है, ऐसे हजारों चंद्रमा सूर्य को उन्होंने लज्जित कर दिया, ऐसे प्रकाश हुआ। एक कथा ये हो गई, लीव इट हियर। सेकंड कथा कैसी है, ये हमारे रूप गोस्वामी जी ललित माधव इस ग्रंथ में बताते, ये भी महाराज जी की कृपा है। मैं ये कथा का सोर्स ढूंढ रहा था तो महाराज जी की कथा में मुझे मिला कि ललित माधव जी में रूप गोस्वामी कथा बता रहे हैं कि हिमाचल को हिमालय को पार्वती देवी प्राप्त हुई। पार्वती देवी अन्नपूर्णा जी है, वहाँ पर इतना अन्न, इतना समृद्धि, इतना ऐश्वर्य है, और इतना एक तो एक उसके उसका गौरव यह है, दूसरा गौरव यह है कि पार्वती का विवाह शंकर जी से हुआ, महादेव जो ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं फिर भी उनका पूजन करते हैं, ऐसे महादेव से उनका विवाह हुआ। तो कितना कीर्ति बढ़ी हिमाचल की कि बेटी हुए तो ऐसी और जमाए हो तो वैसा। तो विंध्य, तो विंध्य थे ना, विंध्य पर्वत, विंध्याचल जो हमारे महाराष्ट्र में, उनको थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। ये सब ईर्ष्या हमारी जैसे नहीं होती है, जैसे गोपियों को जो रानियां कृष्ण की है ना, वो भी सोचते हैं दिन रात राधा रानी ललिता विशाखा बोलते रहते हैं, तो वो ये सोचते नहीं व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ अदर गर्ल्स व्हेन वी आर वाइफ्स, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि उनमें ऐसी क्या बात है जो हमारे में नहीं है, जो हम अपने आप में लाना चाहते हैं, हमको बताइए प्लीज लेट अस नो। तो वो ईर्ष्या नहीं है, वो सेवा का भाव है कि उनमें अगर कुछ विशेष बात है जो हमारे अंदर नहीं है और वे नहीं है आपके साथ और हम आपके साथ में हैं, हमारे अंदर वो बात नहीं है तो वो बात हमारे अंदर कैसे लाया जाए, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि व्हाट इज दैट थिंग विच आई डोंट हैव एंड शी हैज। तो वैसे इसी प्रकार का भावना ही है कि अरे हिमालय को पार्वती प्राप्त हुई, जमाई के रूप में शिव जी प्राप्त हुए, तो मुझे उन्हें तप करने बैठ गए। ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसको, ऐसा पति होना चाहिए जो शिव जी को परास्त कर सके। कुछ समझ में आया आपको, मुझे ऐसी कन्या चाहिए जिसका पति जो बनेगा वो शिव जी को परास्त करने के योग्य होगा। वो कौन है, वो कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति है जो शिव जी को परास्त कर सकते हैं। ब्रह्मा आदि में परास्त कर सकती नहीं शिव जी, शिव जी महादेव क्यों बोलते हैं उनको, ब्रह्मा जी ने उनको महादेव नाम दिया है बाय द वे उनके पिताजी होने पर, ये जानते हुए इनका बल क्या है, शक्ति क्या है। तो अगर शिव जी को परास्त करने वाले कृष्ण है तो उनकी पत्नी बनने के योग्य कौन है, राधा रानी, और कौन है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या प्रार्थना की, क्या तप किया कि राधा रानी हमारी बालिका के रूप में जन्म। तो अभी ये कथा का लिंक लग गया कि वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा देवी ये गर्भवती थी, राधा रानी उनके गर्भ में थी, और चंद्रभानु जो वृषभानु के भाई हैं चंद्रभानु, उनकी पत्नी चंद्रावली को लेकर गर्भवती थी। तो ये जब तप हुआ तो देवताओं की वरदान के रूप में, ये जैसे बलराम जी का हुआ ना संकर्षण इस गर्भ से उस गर्भ में, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, उस प्रकार से ये दोनों गर्भ राधा रानी और चंद्रावली योग माया के प्रभाव से विंध्य के पत्नी के गर्भ में दोनों आए। विंध्य पर्वत की पत्नी है ना, विंध्याचल पत्नी, उनके गर्भ में ये दोनों गर्भ आए और यथावकाश उनकी प्रसूति हुई और राधा रानी और चंद्रावली का जन्म विंध्य के राज्य में हुआ। उस समय जब भी राधा रानी का जन्म हुआ उस समय पुतना जो है ना वो कंस को, जैसे होता है जो कुछ भी बड़ी बात होती है ना, जैसे महाराज इस्कॉन विशाल नगर में आ रहे हैं, समझो समझो समझने में क्या प्रॉब्लम है। अरे हमारे भजन भक्ति मार्ग में हमको बताया गया है देयर इज नो हार्म इन थिंकिंग बिग। प्रभुपाद जी उधर टॉमकिन स्क्वायर पार्ट के उसे बेंच में बैठे हुए, हाथ में एक रुपया का छकड़ा भी नहीं है उनके हाथ में, क्या बोल रहे हैं कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एंड देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बाजू वाला भी बुढ़ा ही था उनके जैसा, लेकिन उसको लगा कि ये बुढ़ा पागल है जो इंडिया से आया है। लेकिन बाद में वो आदमी मर गया होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ साबित किया मैं पागल नहीं था, दूर दृष्टि थी मेरे पास, आई हैड स्पिरिचुअल विजन इन विच आई सॉ एवरीथिंग। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे डोंट बी हेजिटेंट इन थिंकिंग बिग। तो आपको सोचने में क्या परेशानी है कि राजानाथ महाराज इस्कॉन विशाल नगर में आ रहे हैं, इस विचार को मन में लो, उसको पना देते रहो, परवरिश करो, प्रार्थना करते रहो, एक दिन जरूर आएंगे। आते हैं वो, कब आएंगे पता नहीं, आएंगे जरूर। आप प्रार्थना करते रहो, राधा रानी कृष्ण के क्षमता पर भरोसा रखो, हम तो उन्हीं के भरोसे जीते हैं ना, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी किसी को भी ला सकते हैं। ओके, तो वैसे जैसे राधा रानी और चंद्रावली का जन्म हुआ ना, तो बात हवा की तरह फैल गई भारतवर्ष में सब जगह पर कि ऐसी एक कन्या विंध्य के पास आई है जिसका होने वाला पति जो है वो शिव जी को भी परास्त करने वाला होगा। तब इसका आपको हमको क्या पता है, ये कृष्ण ही होंगे और कौन हो सकता है। लेकिन जब भक्त होता है ना उसके मन में ये अनुकूल विचार आ सकता है। दुष्ट क्या सोचेगा, वो होने वाला पति मैं हूं। सी हाउ डिमोनिक थॉट प्रोसेस वर्क्स। तो कंस महाराज क्या सोच रहे हैं, अगर मैंने इस कन्या के साथ विवाह किया तो मैं वो बल प्राप्त करूंगा वरदान के अनुसार कि शिव जी को परास्त करने के योग्य हो जाऊंगा। क्या थिंकिंग है देखो ना, अमेजिंग थिंकिंग, जो इम्पॉसिबल, लेकिन सोच भी कैसे गलत व्यक्ति, गलत धारणा से, ऐसे गलत सृष्टि से क्या आएगा, गलत विचार ही तो आएगा ना, अच्छा विचार कैसे आएगा। आपने सृष्टि ऐसे बना के रखी है अंदर तो गलत ही विचार अंदर आएंगे। तो कंस ने सोचा हे पुतना जाओ और वो दो बालिका को उठा के लेके आओ, एक के साथ मैं विवाह करूंगा, अभी विवाह करूंगा, बालिका तो क्या हुआ, मुझे शिव जी को मारने का मतलब परास्त करने का बल प्राप्त होगा। और कौन है ये शिव जी, कौन है ये शिव जी, अरे इन्हीं की आराध्य है, इनका ही भजन पूजन किया उसने, वरदान इतने प्राप्त किए हैं उन्हीं से किया है, उन्हीं को परास्त करने का विचार उसके मन में आ रहा है। सी दिस इज डीमन, दिस इज कॉल्ड एज डीमन, जो अपने इष्ट विष्ट को सोचता नहीं है कि मैंने इनको, इनसे वरदान मांगा, इनका तपस्या किया, इनको प्रसन्न किया, इन्होंने अपने ढेर सारे वरदान दिए, वो सारा भस्मासुर, चलिए इसको ही सर पे हाथ लगा देता हूँ, इसने मुझे वरदान दिया है कि जिसको हाथ लगाऊंगा वो भस्म हो जाएगा, क्यों मांगा था, आपको भस्म अर्पण करूँ, आपको लगाने में अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं किसी को हाथ लगाऊंगा तो भस्म हो जाएगा, वो भस्म मैं आपको अर्पण करूंगा, आप लगाएंगे, वरदान दो। तथास्तु, वरदान देते समय पार्वती जी बाजू में खड़ी है, इतनी सुंदर, तो पार्वती को भी देख रहा है, वरदान ले रहा है, पार्वती को देख रहा है, दिस इज डीमन। तो वरदान ले देते क्या सोच रहा है, अरे वरदान दे तो एक बार दे दो, आपको ही हाथ लगाता हूं पार्वती मेरी हो जाएगी, दिस इज डीमन। मन में क्या विचार चल रहा है, आप दे दो वरदान, तथास्तु बोल रहे हैं, दे दो दो कम से कम, पहले आपके ही सर पे हाथ लगाऊं, आप भस्म हो जाएंगे तो आप रहेंगे नहीं, तो आपकी पत्नी मेरी हो जाएगी। वैसे ही कंस की सोच है। तो कंस ने पुतना को भेजा, पुतना ये इधर उत्सव मनाया जा रहा है, हाँ लड़कियों का जन्म हुआ ना, बहुत आनंद हुआ, विंध्य पर्वत आनंदित है कि मैंने तप तप किया तो मुझे अभी जो कन्या प्राप्त हुई है उसको जो पति मिलेगा वो शंकर को परास्त करने वाला, यानी मैं हर तरफ से हिमाचल से श्रेष्ठ हो जाऊंगा, उत्सव मनाया जा रहा है। उतने में पुतना आती है, हवाई मार्ग से आती है, क्योंकि वो खेचरी थी ना, वो क्या करती है तिनके को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बनाती है और उस पर बैठ कर दुनिया भर में यात्रा करती है। तो ऐसे आ रही है, वो आकाश मार्ग से उतरती है, जहां पर भी बालिकाएं हैं किसी गोद में उसको उठा के दोनों को लेके चली जाती। अभी उत्सव मनाया जा रहा है, सब हवन होम हो रहा है, उत्सव मतलब हमारे इसमें यज्ञ होना जरूरी है, विदाउट होम हवन देयर इज नो उत्सव, विदाउट ऑफरिंग ओब्लिजेंस टू डेमिगॉड्स एंड ऋषि मुनीज देयर इज नो उत्सव। उत्सव मीन्स यू हैव टू ऑफर फायर सेक्रीफाइस। हमारे गोपीनाथ में जन्माष्टमी के दिन भी पीछे यज्ञ होता है जिसमें आहुति अर्पण करते हैं, और कई बार मुझे बुलाया है ब्राह्मण के रूप में, वो नए नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए। यू हैव टू गिव ब्लेसिंग टू कृष्णा, बिकॉज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ यज्ञ एट द बर्थ ऑफ सम चाइल्ड इज टू गिव ब्लेसिंग टू द चाइल्ड थ्रू अ ब्राह्मणा। सो मुझे आके वहाँ खड़ा रहना है, बोलेंगे आशीर्वाद दो, फिर आशीर्वाद देना है। तो वैसे ये यज्ञ कर रहे हैं, उतने में वो उठा के ले जाती है, तो हाहाकार मचता है। देखो आप सोचो ना, दो बालिकाओं को लेकर कोई राक्षस उठा के ले जा रही है, उसके लिए सब इकट्ठा हुए हैं उसके उत्सव के लिए, तो हाहाकार मचता है। उतने में बिकॉज विंध्या इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, ही नोज स्पिरिचुअल नॉलेज, ही नोज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड यज्ञस, तो वो ब्राह्मणों जो यज्ञ करें उनको बोलते हैं अभी आप ये मंत्र ये छोड़ो और वो ऐसा मंत्र बोलो कि वो आकाश में जल जाए, अग्नि तत्व का विकास करो उसके शरीर के अंदर, प्रज्वलित करो अग्नि तत्व को और उसको आकाश में रिमोट कंट्रोल में भस्म कर दो। तो उन्हें तुरंत आहुति अर्पण करना शुरू किया, अग्नि को आह्वान करके शुरू कर दिया, उसके शरीर में अग्नि तत्व का भयंकर विकास हो गया और वो जलने लगी। अभी तो ज्वाला निकल नहीं रही है, लेकिन वो टेम्परेचर इतना बढ़ गया उसका अग्नि तत्व के कारण, तो वो जलने लगी, उसका हाथ पांव कांपने लगे, उसको सहन नहीं होने लगा। तो उतने में वो असह्यता में उसने क्या किया, वो तो उड़ रही है ना, अभी देखो महाराष्ट्र से उड़ रही है वो यूपी की ओर, सोच सकते ना आप, वहीं से तो उड़ रही है, मथुरा की ओर उड़ रही है, तो बीच में क्या आता है, नागपुर। आप उड़ रहे ना ऐसे, देखो ऐसे जाएंगे तो कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब आएगा, ऐसे जाएंगे तो वृंदावन ऐसा आएगा ना, पहले नागपुर आएगा और वहां से आपको ईशान्य दिशा में नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, तो वैसे उड़ रही है वो। तो थोड़ी देर में उसको अग्नि का अनुभव हुआ, तो उसने एक बालिका राजा चंद्रावली को छोड़ दिया, शी डजंट नो हुम शी इज ड्रॉपिंग, चंद्रावली को ड्रॉप कर दिया। तो वो चंद्रावली जो ना भीष्मक राजा के राज्य में उसका उसको एक सुंदर आसन पे वो स्वीकार किया गया भगवान की इच्छा से, और भीष्मक राजा को प्राप्त हुई। अभी भीष्मक राजा को, वो विदर्भ देश के राजा हैं, आपने पढ़ा ना भागवत में रुक्मिणी के पिताजी, रुक्मी के पिताजी, इसका किसी का जन्म नहीं हुआ है अभी तक, भीष्मक अकेले हैं पत्नी के साथ। तो उनको चंद्रावली प्राप्त हुई, आगे बताओ उसका क्या हुआ। फिर वो एक को छोड़ दिया तो वो पकड़ ही सके, मतलब हाथ से छूट गई वो। फिर वो उड़ते उड़ते कोशिश कर रही कम से कम मेरे स्वामी तक एक तो एक को पहुंचा दूंगी कम से कम। तो वो जा रही है मथुरा की ओर, अब मथुरा की ओर पहुंच ही रही है, लेकिन वो फिर अभी उसको असह्य हो गया, तो राधा रानी भी गिर गई उसके हाथ से। कहाँ गिरी वो, यमुना जी में गिरी, यमुना जी में एक कमल में उसको स्वीकार किया गया, कमल के बेड पर, बहुत सुंदर। तो वो जो राधा रानी है, फिर वो जैसे ही बालिका छूट गए वो मुक्त हो गई वो प्रभाव से, फिर चली गई वो, लेकिन परेशान होकर चली गई। एक जगह वर्णन ऐसे भी आता है कि कृष्ण के जन्म के बाद ये घटना हुई। देखो अभी टाइम वाइज डोंट गेट कंफ्यूज, हाँ ये सब घटनाएं जो है ना, एक साल पहले राधा रानी का जन्म हुआ है और उसके बाद में ये उत्सव मनाया जा रहा है। एग्जैक्टली मोस्टली लॉजिकली अराउंड 345 डेज लेटर, क्योंकि कृष्ण का जन्म के 15 दिन के बाद में राधा रानी का रावल में आविर्भाव हुआ है, तो एक तरफ से वो 15 दिन राधा कृष्ण से छोटी है, लेकिन कई जगह पर लिखा है कि वो कृष्ण से वरिष्ठ है, वो बड़ी है कृष्ण से, तो ये दोनों बातें सच हैं। रावल में उनका प्राकटीकरण का अगर आप समय सोचेंगे तो वो कृष्ण के जन्म के 15 दिन के बाद में वहां प्रकट हुई है, तो छोटी है, लेकिन विंध्य की कथा को रेफर करते हो तो कृष्ण से बड़ी है, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी लड़की ही वो उठा के ले गई थी। वो कभी उठा के ले गई, जब वो गोकुल में कृष्ण के जन्म के बाद सारे नवजात शिशुओं को मारने के लिए पहुंची थी ना, वहीं से उड़ी थी वो कार्य कर रही है, वहीं से कंस का आदेश हुआ जाओ उधर भी जाओ उधर भी लेके आओ, वो मल्टीटास्किंग कर रही है। तो कृष्ण से राधा रानी इस भावना से 15 दिन छोटी है, इस भावना से 345 दिन बड़ी है, क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति में एक साल 365 का नहीं होता है, 360 दिन का होता है, परफेक्ट कैलकुलेशन के अनुसार। अंग्रेज लोगों ने उसको यहाँ वहाँ से घुसा कर अगस्त में एक दिन घुसा दिया, फरवरी का निकाला अगस्त में दे दिया, जूलियस को लगा कि अरे जूलियस राजा को 31 डेज उसके नाम पे दे दिए, अगस्त को लगा राजा को कि मेरे तो महीने में मेरे नाम के महीने में 30 दिन है, तो उसने फरवरी से एक दिन छीन लिया और अपने 31 को बना दिया। कोई लॉजिक है क्या उसके अंदर, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये हमारा काल गणना है, यूजलेस काल गणना। तो वैदिक काल गणना जो है 360 दिन की है। तो वो उस दिन गिरी जो आज का दिन था। आज के दिन भोर के समय जब अंधेरा होता है तो वृषभानु महाराज रोज की तरह स्नान करने जमुना जी पहुंचते हैं, और जमुना जी जब देखते हैं कि उस समय तो अंधेरा होता है जमुना जी में, लेकिन आज उस समय पर अनंत कोटि सूर्यों का सुवर्णमय प्रकाश फैला हुआ है। तो उनको आश्चर्य हुआ, हम लोग जो तो घड़ी देखते रहेंगे, लेट तो नहीं हो गया आज लेकिन वो समय पर थे, लेकिन प्रकाश फैला हुआ था। तो देखा उन्होंने सब जगह प्रकाश फैला है, फिर और गौर से देखा तो लगा कि एक जगह से आ रहा है, वो नदी में से एक जगह से आ रहा है। फिर आगे गए तो पता चला, और गौर से देखा तो वो एक जगह से नहीं आ रहा है, एक कमल से आ रहा है, वो हजारों पंखुड़ियों वाला एक दिव्य कमल है जिससे वो प्रकाश आ रहा है। और आगे गए तो क्या देखा, वो कमल से भी प्रकाश नहीं आ रहा है, कमल में एक सुंदर बालिका है उससे वो प्रकाश आ रहा है। इससे हम क्या सीख सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रूथ इज ऑलवेज डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। यू गो फर्दर डीपर देन फर्दर डेप्थ विल बी फाउंड टू यू। आध्यात्मिक सत्य जो होता है ना, वो एक जगह समाप्त नहीं होता है, उसकी गहराई कभी समाप्त नहीं होती है। तो पहले क्या लगा, सब जगह स्वर्ण प्रकाश है, बाद में लगा एक जगह से आ रहा है, बाद में लगा कमल से आ रहा है, बाद में लगा कमल से भी नहीं आ रहा है, एक कन्या से आ रहा है। और फिर आगे फिर अगर आप गहराई में जाओगे तो कन्या का चरित्र, कन्या का सौंदर्य, कन्या की आंखें, कन्या के चरण कमल, कन्या के उंगलियां, दिव्य उंगलियां, कन्या का वस्त्र धारण, कन्या का स्वभाव, कन्या का प्रेम, ये सारी उसकी गहराई है जो आगे प्रकट होगी। तो उसको लेकर कहते कमल को साथ लेकर आए हो, और वो लेकर बालिका को अपनी पत्नी के गोद में दिया। उस समय कीर्तिदा को वो प्रसूति का अनुभव हुआ, उस लीला में भी वो गर्भवती थी और उनको ये अनुभव हुआ, उनके गर्भ से वहां प्रकट हुई जैसे कृष्ण यहां प्रकट हुए कारागृह में चतुर्भुज रूप में। लेकिन ब्रज में कहीं भी राधा रानी या कृष्ण चतुर्भुज रूप में उन्होंने जन्म लिया क्या? नहीं लिया है। एक दो बार दिखाया अपना रासलीला के बाद में, लेकिन वो इतना टिकाई नहीं उधर, वो ब्रज के प्रेम भरे वातावरण में, वो माधुर्य प्रेम के प्रभाव में उनका ऐश्वर्य जो भी उन्होंने प्रयास किया प्रकट करने का, वो बेचारा टिकाई नहीं, पिघल गया वो ऐश्वर्य, सब माधुर्य में प्रभावित हो गया। तो उन्होंने वो अनुभव किया और फिर क्या हुआ, ऐसे कहते हैं कि कृष्ण का जो जन्म हुआ तो सारे ऋषि मुनि आ गए थे गोकुल में दर्शन करने के लिए, जन्मोत्सव में थे। कौन कौन थे देखो, करभाजन ऋषि, श्रृंगी ऋषि, अगस्त्य मुनि, गर्ग मुनि, शांडिल्य मुनि और बहुत सारी मुनि, हाँ मुझे इतनी याद आ रहे हैं, सारे मुनि वहाँ पर बैठे थे आके। और शांडिल्य तो लोकल है ना, वहाँ के ही है, वो तो लोकल रेजिडेंट साधु है, और उनके ही साथ में सब लोग रहे। क्यों रहे? देवर नोइंग अगर कृष्ण परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर आ गए हैं तो राधा रानी भी अभी आती ही होगी, उनके लिए भी भूमिका बनती ही होंगी, द एटमोस्फेयर मस्ट बी बीइंग क्रिएटेड, तो वाई गो अवे, लेट अस वेट। तो वो शांडिल्य मुनि के आश्रम में वहां पर सब लोग, सब ऋषि मुनि रह गए, वेट कर रहे हैं। और उनको खबर मिली कि कोई स्वर्णमयी बालिका को लेकर विश्वानु महाराज आज जमुना जी से आए हैं, तो सब लोग भागे उनकी घर की ओर। हाँ, कोई सब लोग स्वस्ति वाचन करते हुए, अनंत पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अक्षत उधेड़ते हुए, पुष्प उधेड़ते हुए वो गोकुल से रावल की ओर आ रहे हैं। और अचानक उसमें से एक वीणा की आवाज सुनाई पड़ी सबको, सब लोगों को वीणा की आवाज सुनाई पड़ी, दिव्य वीणा की आवाज। तो सबने देखा वो नारद मुनि पधार रहे हैं, सब लोग नारद मुनि को वंदन कर रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, जितने भी ऋषि का नाम लिया सबके क्या क्या सीनियर वैष्णव वो हैं। तुमने उनको प्रणाम किया और वो गाते गाते आ गए नीचे। वो कृष्ण के जन्म में भी आए थे और कृष्ण के जन्म के बाद बड़े ही इत्मीनान से वेट कर रहे थे कि आइए राधा रानी भी जरूर आएगी, गोलोकेश्वरी राधा रानी आएगी। और उन्होंने अपनी तरफ से एक चार्ट बनाया था, हम लोग कैसे बनाते हैं GPS, हमें रोज ने बोला लोकेशन भेज दो मुझे, आप कहाँ पर हो, तब हम तो उतनी तैयारी करेंगे, आप आ रहे हो। तो वो एग्जैक्टली उसी तत्व का ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है जो उस समय सूक्ष्म स्तर में होता था ना, अभी वो ग्रॉस में हमारे टेक्नोलॉजी ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि यंत्र का दिन है ना आज के लिए, वो मंत्र के दिन थे फिर तंत्र के दिन आए, मंत्र के दिन थे फिर तंत्र के दिन आए, पर यंत्र का दिन चालू है, इसलिए एवरीथिंग इज ग्रॉसली मैनिफेस्टेड हियर, हर एक चीज यंत्र में प्रकाशित हो रहा है। उस समय सब मंत्र के रूप में, सूक्ष्म रूप में प्रकाशित था। तो वो अपने सूक्ष्म रूप में नारद मुनि चार्ट बना रहे हैं कि यहां पर आ सकते हो, मे बी शी विल बी हियर, उनका लोकेशन बता रहा है कि यहां पर है। तो वो लोकेशन उनको कहां ले जा रहा है, वृषभानु महाराज के महल में, वृषभानु गोपद्वार। और वहां पर जाते ही उन्होंने विश्वानु महाराज ने स्वागत किया उनका, उनका पाद्य किया, उनका अर्घ्य दिया, उनको भोजन किया, उनको स्तुति की, उनका अभिषेक किया, उनका गौरव किया, पूछताछ किया, क्षेम कुशल पूछा। और फिर उन्होंने पूछा कि आपके घर में कोई संतान है, तो वो तुरंत ना सुदामा को लेकर आए। सुदामा का सौंदर्य से ज्यादा सुदामा का भाव जो देखा उन्होंने, उनके हृदय से उत्स्फूर्त आशीर्वाद आया कि आपका ये बालक कृष्ण बलराम का अति प्रिय सखा बनेगा। उत्स्फूर्त आशीर्वाद आया, उत्स्फूर्त आशीर्वाद। डोंट थिंक इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ब्यूटी, इट वॉज बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्यूटी ऑफ हिज हार्ट, जो उसका भाव था। फिर वो तो एक एक करके प्रश्न पूछ रहे ना, तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे, कोई कन्या भी है क्या आपके घर पे? तो इसका रहस्य ये था कि जब वो बालिका को लेकर आए, बड़े प्रसन्न हुए, उनका दर्शन करते ही आनंद में फव्वारे फूट रहे थे, आनंद के, परमानंद के फव्वारे फूट रहे थे। लेकिन साथ साथ में दुख भी हो रहा था कि ये बालिका बहुत देर तक, बच्चे तो सोते हैं तो आँख बंद करते ना, लेकिन कुछ देर बाद उठते ना, फिर आँख खोलते हैं, फिर रोते हैं, तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो गया लेकिन आँखें नहीं खुल रही है, कुछ खिलौना लेके बजाया तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है, मुख से भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, ना दर्शन कर रही है किसी का, ना मोल रही है, मतलब अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है। तो ये तो कोई पवित्र का या शुभ का लक्षण नहीं है, तो अशुभ माना जाता है कि भाई सुंदर कन्या है लेकिन बहरी गूंगी होगी तो कैसे उसका। तो ये संकोच से बोले, नहीं नहीं हमारे घर में कोई कन्या नहीं, क्योंकि उनको संकोच हो रहा था कि मेरे घर में गूंगी बहरी और अंधी कन्या हो गई है। नारद मुनि सोच रहे हैं, अपना गणित वापस देख रहे हैं कि मेरा चार्ट गलत तो नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, वो तो यही होनी चाहिए, विचार कर रहे मन में। उतने में विश्वानु महाराज को पत्नी ने और पत्नियों की सखियों ने अंदर बुलाया, हरे कृष्णा। ये समय सोने का नहीं है। राधा रानी के विषय में अभी बहुत गहरा हाँ रहस्य खुलने वाला है। तो वो पत्नी और पत्नी की सहेलियां और विश्वानु महाराज को अंदर लेके गई और कहा उन्होंने कि देखो, ये संत महात्मा होते ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके केवल होने से, इनके केवल एक वचन से, इनके एक आशीर्वाद से कई चमत्कार हो सकते हैं। ये तो केवल आँख खोलने वाली, मुंह खोलने वाले, कान खोलने वाले बातें, तो ये तो इनके आशीर्वाद से हो जाएगा, इनको झूठ मत बताना संकोच से, सत्य बता देना। डॉक्टर के पास, वकील के पास कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे गुरु के सामने भी कभी, संत के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचन करना चाहिए सदैव। तो हो सकता है अगर इनको आपने सत्य बताया तो इनकी कृपा से, इनके वरदान से ये सब कुछ आंखें में खुल जाएगी उसकी। तो फिर वापस आते हैं, मतलब महाराज जी क्षमा कर चाहता हूँ आपसे, मैंने आपको झूठ बताया, हमारे घर में एक लाली भी हुई है, लेकिन एक लाली की हमारी समस्या ये है कि वो आँख नहीं खुलती है, वो कान नहीं खुले उसके, वो कुछ बोल नहीं रही है। तो वो आनंद के भाव से एकदम विभोर हो जाते हैं, यस My chart is true. मेरा चार्ट सही है, वो गलत नहीं हो सकता है, it's proved that is true. यहीं पर हमारी गोलोकेश्वरी राधा रानी ने अवतार लिया है, आई है। तो वो अंदर अंतकक्ष में उसको ले जाते हैं। तो वो जो उनका आंख बंद किया हुआ निश्चेष्ट, एक रूप से निश्चेष्ट, यानी कोई मूवमेंट नहीं, एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, वो रूप को देख कर ना नारद मुनि भाव विभोर हो गए। कहते हैं वो उनका वो रूप देखकर दो घड़ी तक, यानी 48 मिनट तक बेहोश रहे। आप सोच सकते हैं, आपके घर में मेहमान आया, आपने उसको दिखाया और वो बेहोश हो गया तो क्या स्थिति होगी आपकी, क्या करोगे, व्हाट आई शुड डू, लाइक व्हाट, उसको हार्ट अटैक आया होगा कि क्या, कुछ खा के आया होगा तो मृत्यु हो गई होगी कि बेहोश हो गया, वी आर टोटली कंफ्यूज, दे आर नॉट डूइंग, क्या करना है अभी। उतने में अपने आप होश में आते और अभी वो विचार कर रहे हैं, हाँ वो बोल नहीं रहे, उनके मन का जो विचार है वो पद्म पुराण में प्रकट हो गया है। वो क्या कह रहे हैं कि मैंने आज तक रमा यानी लक्ष्मी देवी, सीता देवी राम के अवतार में, शची इंद्र की पत्नी, उर्वशी, रंभा, मेनका जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, और पार्वती देवी, इन सबका दर्शन किया है, अलौकिक अप्रतिम सौंदर्य है उनके अंदर, लेकिन मैं कभी भी उनका सौंदर्य देखकर बेहोश नहीं हुआ। उनका सौंदर्य अलौकिक था, लेकिन वो अलौकिकता में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन आज मैं पहली बार इनको देखकर बेशुद्ध हो गया हूं। क्या सौंदर्य, उनका वर्णन नहीं कर पा रहे हूं कि इतनी सारी देवियों का नाम लिया, और देवी नाम का अर्थ भी होता है और एक अर्थ है पूजनीय, जो पूजनीय होती है अपने आचरण से, संस्कार से और चरित्र से। ऐसे श्रेष्ठ देवियों का दर्शन मैंने किया है, मेरे भाग्य में है, और मैं लक्ष्मी को देखकर भी कोई बेहोश नहीं हुआ और आज मैं बेहोश हो रहा हूं। अचंभित है, पूरे बार बार कंपन हो रहा है उनका शरीर का देखकर। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है महाराज जी। तो नारद मुनि बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा आप अभी बिना संकोच इसके जन्म का उत्सव मनाना, क्योंकि जन्म का उत्सव मनाने में उनको संकोच था क्योंकि वो अंधी बहरी और गूंगी थी। अभी आप समझो आपके बच्चे का जन्मदिन का जन्म का उत्सव मना रहे हैं और सबको बताया जा रहा है अरे ये तो बेबी हमारी अंधी है हमारी, ऐसे कितना आपको ऑकवर्ड रहेगा ना वो। तो यू विल नॉट डू दैट, विल कुछ नहीं करेंगे, जो है वो अच्छा है। तो उनको भी संकोच है इसलिए जन्मोत्सव नहीं मना रहे। तो नारद मुनि ने कहा जन्मोत्सव बिना संकोच मनाइए आप और धूमधाम से व्यवस्था कीजिए और गोकुल में नंद बाबा, यशोदा, कृष्ण बलराम को बुलाना मत भूलना, सबसे पहले उनको निमंत्रण देना। जाओ जाओ तुरंत जाओ, तैयारी करो जन्मोत्सव की, बहुत देर हो चुकी है जन्मों के, क्योंकि उनको राधा रानी के साथ में एकांत चाहिए था। तो जैसे ही सब लोग अभी वो तो चाहते थे लेकिन संकोच से नहीं कर रहे थे, अभी ग्रीन सिग्नल मिल गया तो सब लोग तुरंत भाग गए, सब लोग कृतिदा मैया सब गए। अभी कक्ष में केवल यशोदा, तो केवल राधा रानी और नारद मुनि। और जैसे ये स्थिति हुई, वो जो छुटपी हुई थी ना कंगने पलने में सो रही थी ना, वो 16 साल की उम्र में नव किशोर अवस्था में किशोरी के रूप में प्रकट हुई। उनका तेज देखकर, उनका प्रकाश देखकर नारद मुनि फिर बेहोश हो गए। काम ही क्या, और इतना भाग्य मिल रहा है तो बेहोश होंगे, परम आनंद का परम भाव का अनुभव हो रहा है। तो फिर उन्होंने राधा रानी की सखियां भी साथ में प्रकट हुई, ऐसा एक जगह लिखा है, एक जगह मैंने पढ़ा है कि राधा रानी अकेली वहां पर दर्शन दिए उन्होंने, और राधा रानी दर्शन दिए तो फिर राधा रानी के स्पर्श से फिर वो उनको होश आया, फिर उन्हें बहुत स्तुति की राधा रानी की, बहुत स्तुति की है। और उसके बाद में कहा है कि नारद मुनि ने कहा कि आपके अष्ट सखियों के साथ मुझे दर्शन करने हैं। तो राधा रानी ने कहा कि वो आपको कुसुम सरोवर पे होंगे। तो पहले भी नारद मुनि ना लोटपोट होते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, नाचते हुए आ रहे थे, जब आए पहले बार वहां से जब निकले तो भी ऐसे उठते हुए, गिरते हुए, नाचते हुए, भाव विभोर होकर जा रहे हैं। और कुसुम सरोवर पहुंचे तो वहां पर भी सखियों ने देखा, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया आपको कि राधा रानी अवतार ले रही है, कृष्ण जन्म ले रहे हैं, लेकिन उनकी नित्य लीला ब्रज में ऑलरेडी चल रही है। प्लीज डोंट थिंक दैट अभी वो बड़े होंगे तो रासलीला करेंगे, नो, ब्रज भूमि उनकी नित्य विहार स्थली है, चिरंतन नित्य शाश्वत विहार स्थली है, वो चिरंतन लीला चल रही है। तो कुसुम सरोवर में जो लीला चलनी चाहिए वो चल रही है ऑलरेडी उधर। इसका एक ब्रजवासी और प्रमाण देते हैं कि जिस दिन राधा रानी के जन्मोत्सव मनाते हैं उसी दिन शाम को ब्यावला बनाते हैं। व्हाट इज ब्यावला? ब्याह, उसको ब्यावला कहते हैं, यानी मंदिर में आप अगर दान देंगे ना तो आपके नाम से उनका विवाह किया जाएगा। राधा वल्लभ जी तो आए दिन ब्यावला चलते रहते हैं, कहीं भी जाओ आज क्या है, अरे ठाकुर जी ब्याह कर रहे हैं। राधा रानी को दुल्हन बनाते हैं, उनको भी वो होता ना पंजाब में होता है ना बहुत सारी फूलों की माला दूल्हा के आंखें लगाते ना ऐसे, फिर वैसे देख करके देखता है उसको फिर बंद करता है वो सारा करते हैं। तो आज भी राधाष्टमी के दिन शाम को ब्रज में ब्यावला होता है। इसका अर्थ क्या है, अभी तो जन्म हुआ है, विवाह विवाह का समय की तरह, लेकिन नित्य लीला रोज चलती रहती है। उस तरह से कुसुम सरोवर में नित्य लीला चल रही है, उसमें दो सखियां उधर किनारे में खड़ी है, कौन है, माधवी गोपी और वृंदा देवी, दो गोपियां उधर खड़ी हैं, वो ऐसे भाव विभोर होने वाले एक संत को देख रहे हैं कि वीणा हाथ में है, वो लेके उल्टा सुलटा होके आ रहा है, तो उसको पकड़ते हैं, बोलते महाराज जी क्या है, बोले कि मैं राधा रानी के अष्ट सखियों के साथ दर्शन करने आया हूँ। बोले अच्छा, बहुत भाव से प्रेरित हो गए उनके दोनों ने मिलकर नारद मुनि को दक्षिण कोने में कुसुम सरोवर के स्नान कराया। स्नान करते ही नारद मुनि नारदीय गोपी बने, क्योंकि गोपी भाव सहचरी भाव के बिना यह दर्शन नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने गोपी भाव, गोपी शरीर प्राप्त किया और गोपी भाव को प्राप्त किया। फिर उस गोपी बने हुए नारदीय गोपी को वृंदा गोपी, माधवी गोपी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और कुसुम सरोवर पे आज भी एक अदृश्य ब्रिज है, चारों तरफ से ऐसे, और बीच में एक स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण कमल है, और स्वर्ण कमल में एक स्वर्ण सिंहासन है, उसमें जुगल जोड़ी विराजमान है। क्या कहते हैं? रतन मंदिर, क्या है वो? रतन बेदीर उपारो बोशा बेदुई जाना, उस पे उनको बिठाया है, उनकी सेवा हो रही है, सखियां चामर डुला रही है, गीत गा रही है, भोजन किया जा रहा है, नृत्य हो रहा है, ऐसा सुंदर दृश्य है, अदृश्य है लेकिन वो सुंदर दृश्य है। उसमें ये सजाए धजाए हुए नारदीय गोपी को, वृंदा गोपी, माधवी गोपी हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर और ब्रिज में से लेकर वो सिंहासन तक पहुंचाती है, और वहां पर कमल है, इसमें सिंहासन है, उसमें जुगल जोड़ी बैठी हुई है, उसमें आठ सखियां जो है वो आठ प्रथम पंखुड़ियों में विराजमान है और अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। तो नारद मुनि को दर्शन हुआ, राधा रानी श्याम सुंदर के साथ और अष्ट सखियों के साथ दर्शन हो रहा है। तो वृंदा गोपी ने उनके हाथ में चमर पकड़ाया, फिर चमर डुलावो कबे हेरी बो मुख चंद्र, यहाँ पर किया दर्शन, ऐसे किया तो दर्शन, सेवा के बीच में दर्शन हो रहा है, तो बहुत देर तक सेवा की। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, अष्ट सखियों का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर राधा रानी ने कहा, ये सब उसी दिन की बात है, राधाष्टमी के दिन नारद मुनि को आदेश दिया, आप अभी आप पांच रात्रि में हमारे पूजन के विषय में ग्रंथ लिखो। तो उन्होंने कहा, तो मुझे उसका दक्ष का शाप है, पांच रात्रि कैसे रहूंगा, मुझे तीन रात्रि के ऊपर परमिशन नहीं है रहने के लिए। वो बड़ी लंबी कथा है, भागवत में पढ़ लीजिए आप। दक्ष ने उनको शाप दिया था, तुम जहां जाते हो गड़बड़ करते रहते हो, तीन दिन के ऊपर रहने के लिए तुमको परमिशन नहीं है, नो वीजा मोर देन थ्री डेज एनीवेयर। जैसे इस्कॉन में कैसा लाइफ मेंबर बनोगे, लाइफ मेंबर तो हर मंदिर में तीन दिन, लेकिन नॉट फोर्थ डे, फ्री में रहना है तो तीन दिन किसी मंदिर में रहो, एक लाइफ मेंबरशिप के ऊपर, साल में एक बार तीन दिन कहीं भी रह सकते हो आप। वैसे आप जहां भी जाओगे तीन दिन के ऊपर निवास नहीं है, क्योंकि तीन दिन के ऊपर रहते हो तो आप गड़बड़ करते हो। तो मुझे तो शाप है, मैं कैसे रहूंगा पांच रात्रि। उन्होंने कहा, अरे दक्ष राजा का जो शाप है ना, वो भौतिक दुनिया में अप्लीकेबल है, ये मेरा घर है, निज धाम है, भौतिक जगत नहीं है, दक्ष राजा का शाप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर जितना दिन मर्जी उतना रहो, आपका ही घर है। तो नारद मुनि फिर वहाँ से वो ब्रिज में से वृंदा गोपी, वो आदेश दिया ना उनको, तो वो लेकर आए दक्षिण किनारे में, फिर उनको नहलाया, फिर नारद मुनि बन गए, फिर उन्होंने उनको बहुत मिठाई प्रसाद प्रेम से खिलाया और विदा किया। फिर नारद मुनि वहां से नाचते हुए कूदते हुए बेहोश होते हुए 1 किलोमीटर आगे गए बाईं ओर, और वहां पर एक स्थान है नारद कुंड, वहां पर नारद कुंड में उन्होंने बैठकर पांच रात्रियों में ये पांचरात्रिक, नारद पांचरात्रिक जो है उन्होंने लिखा वहां पर बैठ के। अच्छा, पर यहां पर और एक कथा है, दूसरी कथा कि नारद मुनि को जैसे ही एकांत में दर्शन हुआ ना, तो अष्ट सखियों के साथ दर्शन हुआ। तो मैंने कहा कि वो दोबारा बेहोश हो गए, बड़ा जब बेहोश हो गए ना, सखियों ने क्या किया, राधा रानी भी अभी पूरी युवा अवस्था में प्रकट है, सखियां भी पूरी युवा अवस्था में प्रकट है, उनका एक फिक्स एज है नित्य लीला में, वो सारे एज में प्रकट हुए। तो उन्होंने ना राधा रानी के चरणों को धोकर वो पानी जो है वो नारद मुनि को पिलाया, नारद मुनि जग के बैठ गए। और सखियां कहती है, इनको अच्छी तरह से निहार लो, क्योंकि ये जो दर्शन है ना, अभी ये लीला में कुछ ही समय के लिए है, कि लीला में अभी तो बालिका है ना, वो माता पिता आएंगे तो बालिका रूप में आना पड़ेगा दोबारा, तो इस रूप को अच्छी तरह से हृदय में बसा लो, कुछ ही क्षण में ये गायब होने वाला है, अदृश्य होने वाला है। तो नारद मुनि निहारते रहे। कब दर्शन हुआ उनका, एक ऐसे भी वर्णन आता है कि जब वो नारद मुनि उनको देखने के लिए पल्ले में आए, उनको वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि सहचरी भाव के बिना राधा रानी का दर्शन होना असंभव है, उनका तेज इतना है, उस तेज के प्रभाव से उनका दर्शन नहीं हो सकता है। जब सखियों ने उनको वो चरणामृत पिलाया, मतलब उनकी कृपा हुई उनके ऊपर, तब वो राधा रानी का दिव्य स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप दर्शन करने योग्य हो गए, और अभी दर्शन कर रहे हैं सखियों की कृपा से। हर जगह परंपरा का महत्व बताया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीवेयर इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड परंपरा इज फुल्ली एक्टिव। वहां पर भी आपको प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत जी, वो सब गोपी स्वरूप सखा स्वरूप रहेंगे, आपको आपको तुरंत पता चलेगा ये प्रभुपाद जी है, भक्ति सिद्धांत जी, आपको पता चलेगा, लेकिन वो अलग अपने दिव्य स्वरूप में रहेंगे, लेकिन आप उनको पहचानेंगे। उन्हीं के निर्देश में आपको वहां पर भी सेवा करनी है, बाईपास करके अभी वहां पर पहुंच गए, इसलिए उनको सबको भूलने जाना है। वहीं पर भी उनका ही अधिकार और साम्राज्य होगा संप्रदाय का। जैसे यहां पर नारद मुनि को दर्शन हो रहा है लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, तो जो उनके आचार्य हैं, जो उनकी सखियां हैं, उनकी कृपा से दर्शन हो रहे हैं, उनके ही चरणों का जल पिलाया, लेकिन पिलाया किसने? उन्होंने पिलाया, थोड़ी राधा रानी ने अपने चरण धोके पिलाया, सखियों ने चरण धोके उनको जल पिलाया और नारद मुनि को दर्शन हुए। फिर नारद मुनि ने बहुत स्तुति की है उनकी, अष्ट सखियों का दर्शन किया है, वे दर्शन जो है अंतर्धान हो गया। उसके बाद में जन्मोत्सव शुरू हुआ उसी समय। ऐसा नहीं कि अभी आपको एकांत मिल रहा है तब तक वहां तैयारी हो रही है, एकांत समाप्त हुआ तो उत्सव शुरू। सब लोग आए, कोई बनी ढाड़िन कोई बनी मालिन, सभी देवी देवताएं, हाँ कोई फूल बेचने वाली बन गई, कोई कंगन बेचने वाली बन गई, कोई कुमकुम बेचने वाली बन गई, कोई कुछ बनी, कोई कुछ बनी, हर एक देवी देवता व्याकुल है राधा रानी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि विशेष बात क्या है कि गौलोक में भी राधा और श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए भूलोक वृंदावन जो है, हाँ भौम वृंदावन, भौम गोलोक वृंदावन जो यहाँ पर प्रकट हुआ है, वहाँ का 84 कोस का हिस्सा, वो उससे भी ज़्यादा दयालु है और प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के और राधा रानी के, रामचंद्र प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन होता है। और सभी देवी देवता जितने वैकुंठवासी, सब लोग अपना स्थान छोड़कर आ जाते हैं भाग भाग के दर्शन करने के लिए। तो सारे देवी देवताएं भेष बदलकर, कोई ब्राह्मणी बनकर, कोई मालिन बनकर फूल वाली, कोई झाड़ू वाली बनकर, कोई कंगन बेचने वाली, कोई कुछ करने वाली, कोई हास्य समुद्री, कोई मेहंदी वाली, अलग रूप धन कर के आ रहे हैं, क्योंकि उत्सव है तो कोई मेहंदी लगाएगा, कोई फूल लेगा, कोई कुछ करेगा, उस बहाने हम तो खप जाएंगे उसके अंदर। तो सब चले गए और सबने आकर राधा रानी का दर्शन किया और सबका स्वागत करने में अनजान लोगों को देखते हुए मन में प्रश्न आ रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो कभी मेरे राज्य में देखा नहीं, क्योंकि उनको अपनी प्रजा का पूरा परिचय था कि बरसाने में कौन कौन रहते हैं और कौन नंदगांव में रहते हैं, कौन हमारे यहाँ के मेहमान हैं, सब पता था। लेकिन उसके परे कुछ लोग थे जो उनके पहचान के नहीं थे, बड़े तेजस्वी थे, ब्राह्मण स्वरूप में थे, अलग अलग रूप में थे, लेकिन आप शादी में पूछते हैं क्या कि आप कौन हो, आपको पास कार्ड है क्या, तो आप अगर ज़्यादा होशियार होंगे तो बोलेंगे मैं उनकी तरफ से हूँ, फिर उनके पास जाएंगे बोलेंगे आप कौन हो, तो बोलेंगे मैं उनकी तरफ से हूँ, वही बोला कार्ड है, ऐसा क्या होता है कभी कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसा भी, अब उनका व्यवसाय है, वो शादी के समय पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, टाई वाई पहनकर, बड़ा शादी का जोड़ा पहनकर दूल्हा दुल्हन फ्रेंड्स जाते हैं और पूरा खाना वाना खा के आ जाते हैं इनको लगता है इनकी तरफ से, इनको लगता है इनकी तरफ से, दोनों सोचते रहते कौन है कौन है कौन है। यही स्थिति हुई थी महाप्रभु चैतन्य के निर्माय के जन्म के दिन, यही स्थिति हुई थी प्रभु रामचंद्र के जन्म के दिन, यही स्थिति हुई थी राधा और कृष्ण के जन्म के समय, सारी देवी देवताएं आ रहे हैं उधर, तो ये सबके स्वागत में बिजी हो गए कीर्तिदा वृषभानु। और उसके बाद में फिर नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी आ गए, जिनके लिए नारद मुनि ने कहा था इनको मत भूलना, ये आपके विशेष अतिथि होंगे और जो भी होना है निश्चित रूप से कल्याण होगा वो इन्हीं के हाथों से होगा। तो उनके स्वागत में बिजी हो गए, तो कीर्ति मैया जो है वो गले लगा रही है यशोदा माई को, रोहिणी मैया को, वृषभानु महाराज नंद महाराज को आलिंगन दे रहे हैं, क्षेम कुशल पूछ रहे हैं, प्रेम से अश्रु प्रवाह हो रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको मिठाई दी जा रही है। उतने में क्या हुआ, अंतर कक्ष में राधा रानी पलने में अकेली, फिर एक बार अकेली, तो कृष्ण भी उनके हाथ से नीचे उतर गए, है ना, रेंगते 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 वो कक्ष में पहुंच गए। दो प्रकार के वर्णन आते हैं, जैसे ही श्री कृष्ण उस कक्ष में आ गए, कक्ष में प्रवेश किया उन्होंने, तो उनके शरीर की जो सुगंध है, दिव्य सुगंध, ये सब के जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी नित्य धाम वासी हैं, इनके शरीर से सुगंध निकलती है, कोस कोस दूर तक रेडियस में, त्रिज्या में उनके शरीर की सुगंध फैलती रहती है, राधा रानी की अलग, सखियों की अलग, और सब जब साथ में रहते सबकी मिक्स सुगंध जो है, दिव्य सुगंध, जैसे हमने अपनी बहुत सारे फूल लगा के रखे तो यहाँ पर सुंटक के भी आ रहे हैं, गुलाब का भी आ रहे हैं, चंपा के भी आ रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी, मिक्स्ड स्मेल यू गेट, तो वैसे कृष्ण की विशिष्ट सुगंध जब राधा रानी के नाक में, घ्राणेन्द्रिय में प्रवेश किया, तो राधा रानी ने आंखें खोली और प्रेम से किल्लोल किया। वो किल्लोल सुनकर कीर्ति मैया, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, वृषभानु महाराज, नंद महाराज सब भाग के अंदर प्रवेश किए और पता चला कि अरे उधर आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। एक कथा ये आती है, दूसरी कथा ये है कि जैसे रेंगते हुए बालक होते ना, तुम ये स्टैंड खड़ा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, स्टैंड को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, है ना, या मैया की साड़ी का कोना पकड़ के खड़े हो जाएंगे, या पिताजी का कुर्ते का कोना पकड़ के खड़े हो जाएंगे, या टेबल का कुछ फर्नीचर का कोना पकड़ के खड़े हो जाएंगे। उनको खड़ा होने को नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोशिश करके खड़ा होकर आगे आगे जाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारे श्याम सुंदर जी रेंगते 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 वो पल्ले के पास आए, वो पल्ले को ही पकड़ा, पल्ले को पकड़ के खड़े हो गए, पल्ले को पकड़ खड़े हो गए तो उनके ऊपर ऊपर तक उनकी हाथ पहुंच गया, और उन्होंने जाकर हाथ लगाया श्री जी को, अपने कर स्पर्श किया उनको। जैसे ही कर स्पर्श किया, राधा रानी ने किल्लोल किया, जय जय श्री राधे श्याम। और वो सुनते ही सब भाग के आए और देखा कि अरे नारद मुनि ने ठीक ही कहा था, हमारे सखियों ने भी ठीक ही कहा था कि ये ऋषि मुनि बहुत चमत्कारी होते हैं, उनके अंदर बहुत दिव्य शक्ति होती है, ये क्या नहीं कर सकते। उन्होंने जो बताया था निसंकोच इनके जन्म का उत्सव मनाओ, हमने वो मनाया, और उन्होंने बताया कि इनको मत भूलना, बुलाने के लिए उनको बुलाया, और देखो कृष्ण के लिए ही ये रुकी थी। तो इसकी बैकग्राउंड फ्लैशबैक में कहानी क्या है कि जब भूमि जो है ना वो गाय बनकर दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई, तो उसमें हमारे गुरुदेव बताते हैं कि भूमि और पृथ्वी में कोई भूमि और गैया में कोई अंतर नहीं है, पृथ्वी इज काउ ओनली एंड काउ इज पृथ्वी ओनली। इसलिए गौतम ऋषि ने गाय की प्रदक्षिणा की, जब भी उनका विवाह होने वाला था किसके साथ में, हु वाज दैट माताजी, अहिल्या देवी, अहिल्या देवी परम सौंदर्यवती थी, और उसको देखकर जन्म होने के बाद सारे देवता आ गए विवाह करने के लिए। तो ब्रह्मा ने कहा अरे इतने सारे लोग आए तो कैसे विवाह होगा, एक के साथ विवाह होगा, तो कुछ प्रण होना चाहिए। तो प्रण लगाया कि सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके, वो पृथ्वी मैराथन करके जो पहले पहुंचेगा उसका विवाह उसके साथ हो जाएगा। तो सारे देवता भागने लगे पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए। उसके बाद गौतम ऋषि आए, उन्होंने भी प्रण सुना, उन्होंने कहा कैसे जीतेंगे, सब तो चल चुके आगे ऑलरेडी। उन्होंने गाय देखी और सुरभि गाय का प्रदक्षिणा की उन्होंने, और तुरंत आ गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हमारी परिक्रमा हो गई। उन्होंने कैसे, हमने सुरभि गाय की प्रदक्षिणा की, बोले ये प्रमाण है शास्त्र, शास्त्र शास्त्रोक्त है ये, दिस इज एज पर द शास्त्र। तो तुरंत उनका विवाह लगा कर दिया उन्होंने, और फिर बहुत बहुत देर के बाद सब लोग अपना मैराथन पूरा करके आए, बोले मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया, तो फायदा क्या उसका, शी इज ऑलरेडी मैरिड, शी इज मैरिड ऑलरेडी, कैसे हो सकता है ये। उन्होंने कहा देखो गौतम ऋषि ने गाय की प्रदक्षिणा की, क्योंकि गाय की प्रदक्षिणा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के बराबर है, इस हिसाब से भी, इस प्रमाण से भी, इस भाव से भी, और वैसे भी पृथ्वी और गाय में कोई अंतर नहीं है। जब पृथ्वी को पीड़ा होती है तो गाय को पीड़ा होती है, जब गाय को पीड़ा होती है तो पृथ्वी को पीड़ा होती है, जब पृथ्वी को पीड़ा होती है तो गाय का रूप लेकर जाती है। तो जब पृथ्वी गाय का रूप लेकर जब ब्रह्मा जी के पास गई, तो ब्रह्मा जी उनको लेकर विष्णु के पास गए। अभी देखो अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि हमारी कृष्ण की लीलाएँ मोनोटोनस नहीं है, उसमें बहुत सारी विविधता है, कल्प वेद के अनुसार बहुत सारी विविधता है। एक हमारे भागवत में क्या लिखा है कि वो गाय के पास, गाय लेके गई ब्रह्मा लेके गए उनको क्षीर सागर किनारे, वहाँ से पुरुष सूक्त गाया गया, प्रार्थना की गई, क्षीर सागर के भगवान उसके क्षीर सागर में अंदर विराजमान है, वहाँ से टेलीपैथी मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ, सबको बता दो अपना अपना काम करो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने वो डिकोड किया, मैसेज दिया, सब लोग अपनी जगह पर चले गए, जन्म लिया, यथावकाश कृष्ण आ गए। गर्ग संहिता में विस्तार में क्या लिखा है, वो क्षीर उदक सागर विष्णु जो सदैव ऐसे स्थिति में टेलीपैथी मैसेज देते हैं, कोडेड मैसेज, वो इस समय कोडेड मैसेज न देते हुए स्वयं वहां किनारे पर प्रकट हुए, अपना स्थान छोड़कर किनारे पे आ गए, और उनको कहा चलो हम सब आपको लेकर गौलोक वृंदावन चलते हैं। तो ब्रह्मा शिव आदि सारे देवताओं को और गाय को रोते हुए बिलखते हुए गाय को लेकर क्षीर उदक साई विष्णु उनको गौलोक धाम लेके गए, वहां पर श्री हरि का दर्शन हुआ। तो श्री हरि का दर्शन हुआ तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, वो पहले सबसे पहले क्षीर उदक साई विष्णु जो है वो श्री हरि के अंदर विराजमान हो गए, विलीन हो गए। उसके बाद में उनके आंखों के सामने रामचंद्र प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और सारे हनुमान और सारे वानर सेना प्रकट हो गए, करोड़ों के लोग प्रकट हो गए, वो सारे झुंड में श्री हरि के शरीर में प्रवेश कर गए। फिर यज्ञ पुरुष और दक्षिणा देवी, फिर वामन देव उनकी लक्ष्मी, फिर वराह देव उनकी लक्ष्मी, नरसिंह देव उनकी लक्ष्मी, अलग लक्ष्मियाँ हैं, सब लक्ष्मियों के साथ वो सारे अवतार भगवान में विलीन हो गए, वो सब देखते रह गए, सारे अवतार जितने भी थे भगवान के पति पत्नी के रूप में सारे श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए, सब देखते रह गए। फिर हरि ने अपना संभाषण शुरू किया और कहा, निश्चिंत रहो गो माते, पृथ्वी माते, निश्चित रूप से मैं आऊँगा और आपके संकट का निवारण करूँगा। और सबको ना अभी डिटेल में बताने पाया मैं पाऊँगा, एक एक व्यक्ति को आदेश दिया, तुम अश्वत्थामा बनो, तुम द्रोण बनो, तुम भीष्म बनो, तुम पांडव बनो, ये सब ये जब जितने भी आदेश थे, ये विश्वानु महाराज, नंद महाराज, वसुदेव, ये सब लोगों को रोल दे दिया कि तुम वसुदेव बनो, तुम नंद महाराज बनो, वृष्णि कुल में और मथुरा के कुल में, ब्रज के कुल में और कुरु के कुल में, मथुरा में सब जन्म लो लो, वृष्णि वंश, कुरु वंश, पांडु वंश, जितने भी वंश हुए हैं। और राधा रानी को बुलाया कि भाई हमको जाना है। राधा रानी सुनते ही बेहोश हो गई, तो उनको फिर जगाया गया, तो पूछा गया क्यों आप बेहोश हो गए, तो आपने तो कहा ना आप जा रहे हो। तो कृष्ण ने कहा, श्याम सुंदर ने, श्री हरि ने, कि किसने आपको कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, आपके बिना तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन राधा रानी ने कहा कि आप चाहते हुए मैं आपके आऊंगी नहीं, क्योंकि ब्रज छोड़कर मैं बाहर जाती नहीं, गोलोक वृंदावन छोड़कर। तो कृष्ण ने कहा कि आपके मंतव्य को पहले से ही जानकर, मैंने ये कहने के पहले से ही गोलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा पृथ्वी पर भेज दिया है, पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन मैंने पृथ्वी पर भेज दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा था, जहां पर यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र नो नमो यमुना नदी यत्र नो वृंदावनम, मैं वहां पर कभी भी नहीं जाऊंगी जहां पर वृंदावन गोवर्धन यमुना नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि आपके इच्छा के अनुसार, मंतव्य के अनुसार जानते हुए पहले ही 3 वस्तुओं को मैंने ऑलरेडी पृथ्वी पर भेज दिया है। तो राधा रानी कहती है, हमारी और एक शर्त है, आपके प्लान के अनुसार हमें आपके बाद में अवतरित होना है, तो हम आपके बिना किसी को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं सुनेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे। इसलिए राधा रानी आंख बंद करके थी, मुंह बंद करके थी और कान बंद करके थी। उन्हें इस भौतिक विश्व में, या तो गोलोक का हिस्सा ही है लेकिन फिर भी भौतिक वर्ल्ड में आई ना वो, या भौतिक वर्ल्ड में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, कहीं भी उनको कृष्ण के अलावा, उनका इतना उनका एकाग्रता है उनके ऊपर, इतना समर्पण है कि उसके बिना वो कुछ नहीं चाहते हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं उनके बिना, ना कुछ देखना चाहते हैं, ना कुछ कहना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। और आचार्य हमारे गण जो है ना, वो पातिव्रत धर्म का जब व्याख्या करते हैं तो उन्होंने एक सर्वोच्च व्याख्या दी है। पतिव्रता की व्याख्या क्या होती है? जो अपने पति के प्रति तन मन धन काया से वाचा से, हाँ, काया वाचा मने समर्पित है, उसे, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो व्याख्या दी है कि जो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जिनके विचार में, जिनकी क्रिया में, जिनकी वाचा में, जिनके श्रवण में और कार्य में कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी पतिव्रता है। इसमें पुरुष भी आ गए, स्त्री भी आ गए। ये पातिव्रत्य का उन्होंने, पतिव्रता नारी का वर्णन नहीं किया है, व्याख्या नहीं किया है, पातिव्रत्य धर्म का व्याख्या किया है। तो पातिव्रत धर्म का अर्थ क्या होता है? एवरीथिंग कृष्ण, मन में राम, तन में राम, वाचा में राम, श्रवण में राम, श्रुति में राम, सब जगह राम, वैसे ही कृष्ण। भक्ति का भी यही तत्व है। इतनी गोपियां कृष्ण को प्रिय क्यों हैं? क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण के अलावा कोई विषय ही नहीं है। डगर डगर पे शाम, पाती पाती में शाम, जमुना टटी शाम, कण कण में शाम, हर जगह शाम, इत ढूंढू उत शाम, शाम भई मैं शाम, इतना शाम शाम है कि स्वयं भी शाम मैं बन जाती हूँ और शाम की तरह बोलना लगती है, शाम चलना लगती है, नाचना लगती है, मुरली बजाना लगती है। इतना विचार शाम का गहरा है कि वो शाम ही हो जाती है। शाम भई मैं शाम, सखीरी शाम भई मैं शामरी, शाम रंग में ऐसी भीगी, शाम भई मैं शाम। ये उनका अस्तित्व है। वो कब गोपी कब शाम, कब गोपी कब शाम, कोई भरोसा नहीं है। और इसी उनके अस्तित्व को, चरित्र को कृष्ण देखते रहते हैं, इसलिए उनके हो जाते हैं। और वो भी कभी शाम कभी राधा, कभी शाम कभी राधा हो जाते हैं, स्वयं राधा में हो जाते हैं, कभी शाम राधा में होते, कभी राधा शाम में होती है। ये जो विचित्र लीला है प्रेम की, ये ब्रज में निरंतर शाश्वत रूप में चिरंतन रूप में चलती रहती है। तो यही कारण था कि राधा रानी ने जन्म के समय आंखें नहीं खोली थी। हमें जन्म होते ही यानी जन्म लेते ही वो एक बड़ा स्ट्रांग संदेश दे रही है। अगर आपको जीवन में यशस्वी होना है, मनुष्य जीवन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको किसी को देखना नहीं है कृष्ण के अलावा, आपको किसी की सुनना नहीं है कृष्ण के विषय के अलावा, कुछ सुनना नहीं है कृष्ण के अलावा, आपको कुछ बोलना नहीं है, और कृष्ण के सेवा के अलावा कुछ करना नहीं है, और बाकी अपना शरीर को संभालना है वो भी कृष्ण की सेवा के लिए संभालना है। जैसे जो व्यवसाय कर रहे हैं, घर गृहस्थी कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी उनके लिए ही करना है, इसलिए कर रहे हैं। हमारे जॉब का, हमारे व्यवसाय का, हमारे धनार्जन का, हमारे परिवार संपादन करने का जो कार्य है, वो भी उन्हीं की प्राप्ति के लिए, अनुकूलता के लिए हम कर रहे हैं। जस्ट टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल, वी हैव टू ईट, वी हैव टू क्लोथ, वी हैव टू अर्न मनी, लेकिन करना सब उनके लिए है। जब ऐसे हमारा जीवन होता है तो वो जीवन गोपी से कम नहीं है, वही गोपी भाव है। और हर व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि अपना जीवन ऐसे बनाए, हाँ उसको भी बंद करो क्योंकि वो लाइफ समाप्त हो गया उसका, बैटरी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा ऐसा विचार है कि कथा को यही विराम दिया जाए, क्योंकि आपको